نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة البقرہ آیت نمبر 189 سے 199 تک کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ. یسألونک، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یا سے پتہ چلا وہ، اور واو نون سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے. کا تجھ سے، ان بارے میں، الاہلہ، الاہلہ کسے، ہا لام لام سے، یعنی چاندوں کے بارے میں. آپ نے پہلے پڑھا تھا نا، وما اہلہ بھی لغیر اللہ، یہ پڑھا تھا جہاں پہ حرام چیزوں کی بات آئی تھی کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. تو اس میں آیا تھا کہ جو جس میں غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے. تو چاند کو بھی دیکھا جاتا ہے، جب نیا چاند ہوتا ہے تو پکارا جاتا ہے کہ نیا چاند ہے، نیا چاند چڑھ گیا، تو اس لیے اس کو اہلہ کہتے ہیں. قل کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت، مواقیت وقت سے ہے، یعنی وقت بتانے کا ذریعہ. للناس، لیے لوگوں کے، والحج، اور حج کے لیے. ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بالکل بھی نہیں ہے یہ نیکی. بی ان، یہ کہ، تأتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں کو، من ظہوریہا، ان کی پچھلی طرف سے. ولیکن، لیکن، البر، نیکی، یہ ہے، یعنی نیک ہونا یا نیک. اصل میں تو البر کہتے ہیں نیکی کو، مصدر ہے، لیکن یہ فائل کے لیے آیا، یعنی نیک آدمی وہ ہے، من تقا، جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُو، اتا، یأتی، آتو، اسی سے امر ہے تو آنے کا معنی ہوتا ہے. آتو، آؤ تم، البیوتا، گھروں کو، من سے، ابواب، ابواب، باب کی جمع، ابواب، دروازوں، ہا، ان کے، کن کے، بیوت کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ. وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے. ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، معتد، اعتدا، زیادتی کرنا ہوتا ہے نا، تو معتدین، جو زیادتی کرنے والے. وقتلوہم، وقتلو، اور قتل کروہم، ان کو، حیثو، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ، ثقف، پانا، تم پاؤ، ہم، ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اخرج ہے خراج، جیسے ہوتا ہے نکلنا، تو اخرج فعل امر ہے، یعنی نکالو. ہم، ان کو، من حیثو، جہاں سے، اخراجو، انہوں نے نکالا. پہلا والا امر تھا اور دوسرا والا مضارعی ہے، انہوں نے نکالا، کم، تم کو، ماضی ہے. والفتنہ، تو، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند پاس، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتی، یہاں تک کہ، یقاتلو، وہ لڑیں، کم، تم سے. میں نے آپ کو بتایا تھا قاف کے اوپر اگر کھڑی الف آ جائے نا، قاف الف، یا قاف کے اوپر کھڑی الف، تو لڑنے کا معنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسے باب سے جس میں آپس میں کی بات آتی ہے. یقاتلکم فی، اس میں. فَإِن، پھر اگر، قاتلوا، وہ لڑیں، کم، تم سے، فقتلوهم, تو قتل کرو ان کو, کذالک, اسی طرح, جزاؤ, بدلہ ہے, الکافرین, کافروں کا. ف پھر ان, اگر, انتہو, وہ باز آ جائیں, نہیں سے ہے, وہ رک جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور لڑو ان سے, حَتَّى, یہاں تک کہ, لا تَكُونَ, نہ رہے, فِتْنَةٌ, فِتْنَة, وَيَكُونَ الدِّينُ, اور ہو جائے دین, لِلَّهِ, لیے اللہ کے صرف. فَإِن, پھر اگر, انتہو, وہ رک جائیں, باز آ جائیں, فَلَا, تو نہیں, عُدْوَانَ, عُدْوَان, عدو سے ہے, عدو دشمن کو کہتے ہیں, عدو و مبین پہلے پڑھا نا آپ نے کہ شیطان عدو و مبین ہے, تو عدوان اسی سے ہے, یعنی عدو کیا کرتا ہے, زیادتی, کوئی زیادتی, الا مگر, علی الظالمین, اوپر ظالموں کے. الشہر الحرام, شہر آپ جانتے ہیں یہ لفظ, شہر رمضان, یہ سنا ہوا ہے نا, رمضان کا مہینہ, تو اسی طرح شہر, شہر الحرام, ماہ حرام, بالشہر الحرام, بدلے ماہ حرام کے, والحرمات, اور حرمتیں, حرمتوں کا, قصاص, قصاص ہے, بدلہ ہے, پہلے پڑھا ہے ہم نے قصاص کا لفظ, قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس نے جیسا کیا ویسا ہی اس سے بدلہ لے لینا. فمن, تو جو کوئی, اعتدا, زیادتی کرے, وہی ہے جیسے ہم نے پہلے عدوان پڑھا تھا, علیکم, تم پر, فاعتدوا, تو زیادتی کرو, علیہ, اس پر, بی, مانند, جیسے کہ, مثلی, جیسے کہ, مانند, بی, اس کے, ما, جو, اعتدا, زیادتی کی اس نے, علیکم, تم پر, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, وعلمو, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, مع المتقین, ساتھ متقین کے. وانفقوا, اب یہ سارے امر کے سیغے آ رہے ہیں, ينفقونا آپ نے پڑھا ہے, انفاق, فی سبیل اللہ پڑھا ہے, لیکن انفقو, انفاق کرو, یعنی خرچ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ولا تلقو, اور نہ تم ڈالو, القا کرنا کیا ہوتا ہے, ڈالنا, بی ایدی کم, اپنے ہاتھوں کو, التہلکہ, یعنی تہلکہ, ہا لام کاف سے, ہلاکت میں, و احسینو, اور احسان کرو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب المحسنین, محسنین سے محبت کرتا ہے. وَأَتِمُّ, اور تمام کرو, پورا کرو, الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِن, پھر اگر, اُحْصِرْ, تم, حصار سمجھتے ہیں, حصار, حصار اردو میں لفظ بولا جاتا ہے, یعنی کسی چیز کو حصار میں لے لینا, وہ کہتے ہیں پولیس نے آپ کو حصار میں لے لیا, یعنی آپ کو سراؤنڈ کر لیا, تو تم گھیر لیے جاؤ, او سر, تم گھیر لیے جاؤ, وی آر سراؤنڈیڈ. فما, تو جو استیسرا, میسر آئے, من الحدی, قربانی سے. ولا تحلقو, اور نہ تم حلق کراؤ, حلق کیا ہوتا ہے, سر منڈانا ہے نا, جب حج عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ تھوڑے بال کاٹتی ہیں, لیکن مردوں کا شیو کراتے ہیں, تو حلق وہ ہے شیو کرانا. ولا تحلقوا, اور نہ تم منڈواؤ, رؤوسکم, اپنے سروں کو, حتی, یہاں تک کہ, یبلغا, پہنچ جائے, الہدی, قربانی, محلہ, اپنی جگہ کو, اپنی حلال گاہ کو, حالام لام سے. فمن, تو جو کوئی, کانا, ہو, منکم, تم میں سے, مریدن, مریض, او, یا, بی, ہی, ساتھ, اس کے, بی, ساتھ, ہی, اس کے, ادن, اذیتو, میں راسی, اس کے سر میں, کو سر کو کہتے ہیں نا, تو ہی, اس کے, ففدیۃً, تو فدیہ دینا ہے, من صیامٍ, روزے سے, او صدقۃً, یا صدقے سے, او نسک, یا قربانی سے. نسک قربانی کو کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے, ان صلاتی و نسکی بھی آتا نا. فاذا امنتم, تو جب امن میں آ جاؤ تم, فمن, تو جو کوئی, تمتع, فائدہ اٹھائے, بالعمرتی, عمرے سے, الی الحج, حج تک, فمستیسرا, تو جو بھی میسر آئے, من الحدی, حدی میں سے. فمن لم یجد, تو جو کوئی نہ پائے, فصیام ثلاثتی ایام فی الحج, تو روزے رکھنا ہے تین دن کے حج میں, و سبعت, اور سات, اذا رجعتم, جب لوٹو تم, تلکا, یہ, عشرۃن, اب ذالکا بھی ہم پڑھتے ہیں, ذالکا کی طرح ہی تلکا بھی ہے نا, ذال اور تا کا ہی صرف فرق ہے, وہ اس لیے ہے کہ تلکا مؤنث کے لیے और दालिका मुजक्कर के लिए। आगे अशरतुन कामिला आ रहा है ना, मोनस है तो इसलिए तिलका आया। ये 10 हैं कामिला, कामिल पूरे। दालिका ये लीमन, ली लिए, मन उसके जो, लम नहीं, यकुन हूं, अहलुहु उसकी अहल, हादिर हादिर हाजिर जैसे हम बोलते हैं, मौजूद, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल हराम के, वत्तकुल्लाह वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीद अल इकाब, शदीद है अल इकाब, इकाब में, इकाब कहते हैं इंतकाम लेना, अकबा एड़ी को कहते हैं ना, तो एड़ी पीछे होती है, इसी तरह जुर्म के बाद क्या होता है उसकी सजा, उसका इंतकाम, क्योंकि उसने एक जुर्म किया, तो शदीद अल इकाब यानी सख्त सजा देने वाला भी है। अल हज्जु हज, अशहुरुम महीने, मालूमात मालूम यानी सब कुछ पता है जाने बूझे, फमन तो जो कोई, फरादा फर्ज करे, फीहिन्ना इनमें, अल हज हज को, फला तो नहीं, रफसा रफस करे, ये रफस कहते हैं आदमी और औरत के दरमियान कोई भी सेक्सुअल कंटेंट की बात, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप है, वो तो बहुत दूर की बात है, यानी रफस में आ जाता है कि कोई भी किसी किस्म की भी ऐसी बात जो के जिसमें कोई भी सेक्सुअल कंटेंट हो वो नहीं कर सकते, औरतों की तरफ रगबत करना कह दें, शहवानी कोई फेल करना, वला फुसूक और ना कोई गुनाह के काम, फिस्क कहते हैं ना इताअत से निकल जाने को, क्या कहते हैं फिस्क, वला जिदाला और हम कहते हैं ना जंगो जदल, तो जिदाल उसी से है, ना कोई झगड़ा, फिल हज हज में, वमा तफालू और जो तुम करोगे, मिन खैरिन भलाई में से, यालमहुल्लाह जान लेगा अल्लाह, व तजव्वदू और तुम तजव्वदू ज्यादे राह ले लो, फइन्ना तो बेशक, खैर ज़ादी बेहतरीन ज़ादे रा तकवा तकवा, व तकूनी और डरो मुझसे, या उल अलबाब अकल वालों, लैसा अलैकुम नहीं है तुम पर, जुनाह उन कोई गुना, अन के तबतहू तुम तलाश करो, फदलम फजल को, मेर रब्बिकुम अपने रब की तरफ से, फईदा फिर जब, अफत तुम फादा अफूदू, फादल मा कहते हैं जब पानी इतना भर जाए कि बाहर गिर पड़े, तो यानी पलटना, तो तुम पलटो, मिन आराफातिन आराफात से, फज़कुरुल्लाह तो जिक्र करो अल्लाह का, इंदल मशारिल हराम मशारे हराम के पास, वज़कुरु और याद करो, हु उसको, हु किसको, अल्लाह को, कमा जैसे के, हदाकुम हिदायत दी तुमको, व इन कुन तुम और इन कुन तुम, इन का माना यहाँ पे बेशक का करें, इनका माना वैसे अगर का होता है ना, बेशक का क्यों करें, क्योंकि आगे ल आ रहा है, ला मीना दौलीन है ना, तो वह इन इन्ना के मानों में, और बेशक कुन तुम थे तुम, मिन कबली ही इससे पहले, ला मीना दौलीन अलबत्ता जालिमों दौलीन गुमराहों में से, ला जो होता है एक माना इसका यकीनन का भी होता है जिसको हम अलबत्ता कहते हैं, सुम्मा फिर अफीदू अफीदू फादो अफीदू कि यही तुम पलटो, जैसे आपने अफत तुम पढ़ा, तुम पलटो, मिन हैसु जहां से, अफादा पलटते हैं अन्नास लोग, वस्तगफिरुल्लाह और तुम सब बख्शिश मांगो, वाह वाह लिफ है ना एंड में, तो सबको कहा जा रहा है, वस्तगफिरुल्लाह होता तो फिर एक को, बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा आज का सबक है, देखते हैं आज के सबक में, मगर इससे पहले हम देखेंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमने बहुत इम्पोर्टेंट आयात पढ़ी थी रोजे के हवाले से, रमजान के हवाले से, और शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें अभी बाकी है कि वो लोग जो रोज़ा छोड़ चुके हों कभी पास्ट में, जैसे अपनी प्रेगनेंसी में या दूध पिलाने के अय्याम में या पीरियड्स की वजह से, तो अब वो क्या करें, क्या वो फिदिया दें या वो रोज़े रखें, तो रोज़े बहुत ज़्यादा हैं उनका क्या करें। तो देखें ये तो एक कर्ज है आपके ज़िम्मे, जब नहीं पता था तो नहीं पता था, अगर अब पता चल गया है तो ऐसा करें कि उनकी एक कैलकुलेशन, एक रफ कैलकुलेशन बना लें, कोई अप्रोक्सीमेट भी तो चीज़ होती है ना, तो अप्रोक्सीमेट एक चीज बना लें। अगर आप उस उन दिनों को गिन के किसी डायरी में लिख लें और फिर आप जैसे जैसे अपने रोजे पूरे करती जाएं, आप मार्क करती जाएं और कुछ ना कुछ तो कम होता जाएगा ना। इन द मीन टाइम आप फिदिया भी दे दें, ठीक है, फिदिया भी दे दें। और उससे क्या फायदा होगा कि अगर इस सफर में इसको पूरा करने के रास्ते में मौत आ जाती है तो कम से कम फिदिया तो दिया होगा, फिर मोहलत ही नहीं मिली, फिर ठीक है, फिर तो वारिसों ने भी रोजे रखने थे या फिदिया ही देना था ना। लेकिन जितने भी आप पूरे कर सकेंगे उतने तो हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप मंडे थर्सडे का रोजा रख लिया करें या मैं भी ईद के रोजे रख लें इस नियत के साथ कि जो मेरे फर्ज रोजे हैं, और उन रोजों को भी मार्क डाउन करती जाएं कि ये इतने इतने मैं रखती जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो ताला हो सकते हैं। किसी चीज को नामुमकिन समझ लेना कि भाई हो ही नहीं सकता, ऐसे तो नहीं है ना। 300 400 रोजे भी हैं तो कोई हो सकता है 10 साल में 15 साल में पूरे हो ही जाए। अब लेकिन फिदिया आज जरूर दे दें उन रोजों का। अब जो लोग ऐसे किसी क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो चुके हैं, कोई ऐसे उनको बीमारी लग चुकी है कि अब वो रख ही नहीं सकते, और लेकिन अब उनको पता चला कि वो रखने थे हमने, तो उनके पास तो जाहिर है कोई चॉइस नहीं है कि वो सिवाय इसके कि फिदिया ही दें, ठीक है, तो वो फिदिया अदा कर दें। तो ये सिंपल क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, वमन कैना मरीदन औ अला सफरिन, क्या है उनके लिए वो फिदिया दें, या फाइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। तो इस चीज को समझे कि बाद में उसकी कजा पूरी करनी है, ठीक, और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और दुआ का भी हमें समझ आ गया कि जब भी मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अल्लाह ताला हमारी सुन रहा है, इस यकीन के साथ मांगनी है, और अल्लाह ताला हर अपनी से मांगने वाले को जानता है, पहचानता है, उसकी सुनता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है तुम भी तो मेरी सुनो ना। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने किस चीज को हलाल किया है और किस चीज को हराम किया है रोजे के दिनों में, और फिर हमने रोजे के औकात भी पढ़े कि किस वक्त हमने रोजा बंद करना है और कब खोलना है, और मियाँ बीवी का आपस में जो किस चीज से अल्लाह ताला ने तशबीह दिया उनके रिलेशनशिप को, वो भी हमने देखा। एक दूसरे का लिबास है जो बहुत ही प्यारी तशबीह है, और हमने देखा कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खा, और बातिल जो है ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, और बातिल में सब वो तरीके आ जाते हैं जो गलत तरीके हैं, जिनमें किसी को किसी किस्म का भी नाजायज फायदा उठाना, धोखा देना। और इसमें एक चीज को जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी, और वो ये कि अक्सर हम लोग अपना गोल्ड जो है ना वो दे के और दूसरा कोई और डिजाइन, मसलन अब किसी के पास कोई सेट पुराना हो गया, वो अपना गोल्ड लेके गई है और कहती है कि इसको दे के ना तो मैं नया सेट ले लेती हूँ, कोई और लेटेस्ट डिजाइन का, या इसको सेट को दे के चूड़ियां ले लेती हूँ, या कुछ इस तरह की चीज, ठीक। तो ये इस किस्म की ट्रांजेक्शन जो है करना, ये हराम है, इसमें सूद आता है। आप जब उनको देते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये मसलन 5,000 का बना, और जो ले रहे हैं उसमें उसके लिए आप 1,000 और डालेंगी तो आपको ये नया सेट मिल जाएगा, तो 6,000 का हो जाएगा। एक ही कमोडिटी का इस तरह से ट्रांजेक्शन करना के चीज दी है और दूसरी चीज ली है, जो एक ही कमोडिटी यानी सोना ही है या खजूर ही है, तो खजूर दी, अपनी अच्छी खजूर दी, दूसरे की रद्दी खजूर ज्यादा करके ले ली, या अपनी रद्दी खजूर थोड़ी दी और दूसरे की ज्यादा करके उम्दा थोड़ी करके उम्दा खजूर ले ली, तो ये ट्रांजेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूदी है। तो इसलिए हमारे जो शेख हैं जिनसे हमने पढ़ा था, तो वो कहने लगे कि मैं एक दफा एक इस तरह सुनार के पास गया और मैंने चीज बेची, ये तरीका मैं सही वाला आपको बता रहा, चीज कहते हैं मैंने बेची, फिर मैंने उसकी कीमत ली, फिर मैं बाहर आया, फिर मैं अंदर गया, फिर मैंने कोई और चीज खरीदी। तो उसने कहा ये आपने क्या किया, दुकानदार कहने लगा, ये आपने क्या किया, अगर आपने कोई और चीज मेरे से खरीदनी थी तो आप उस वक्त ही दे देते और दूसरी चीज ले लेते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, फिर ये सूद हो जाता, यानी आप पहले उसकी कीमत लें। और वो उठ के बाहर क्यों गए, इसलिए कि सौदा मुकम्मल नहीं होता जब तक के बाय और मुश्तरी जो है ना, जब तक के खरीदार और दुकानदार जो है वो जुदा ना हो जाए, तो सौदा तब मुकम्मल होता है। अदरवाइज जब तक वो एक दूसरे के साथ एक मजलिस में बैठे हुए, उस वक्त तक कोई भी इनमें से कह सकता है कि नहीं मैंने नहीं बेचना, या दूसरा कह सकता है मैंने नहीं खरीदना। जब जुदा हो गए तो फाइनल हो गई ट्रांजेक्शन। तो कहते हैं मैं बाहर गया, फिर मैं अंदर आया, फिर मैंने खरीदा। तो ये है इसके अंदर, और ये अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता। अक्सर खवातीन यही करती हैं, हम गए और ये दे के हम दूसरा ले आए, तो ये नहीं करना। दूसरी एक और चीज जो बहुत कॉमनली यहाँ पे होती है वो है लॉटरी। लॉटरी वगैरह भी हराम है, ठीक है, इसका भी कारोबार भी हराम है, और लॉटरी खेलना ये भी हराम है। क्यों, इसलिए कि बहुत सारे लोग लेते हैं वो टिकट, लेकिन मिलता किसी एक को है, और उसको बगैर किसी अपनी मेहनत किसी चीज के, मतलब उसने $10 का लिया था टिकट और उसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल आए, तो किस बात पे, जबकि वो सब का पैसा था। इसी तरह आप कहीं जगह जाते हैं ना, जहाँ पे वो खेलने को आपको कहते हैं कि आप इतने पैसे दें और फिर आप कुछ जैसे तीर मारें, अगर आपका तीर इस चीज पे लग गया तो वो चीज आपकी होगी, वो भी हराम है। ठीक है, बाज दफा लगता ही नहीं, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं मिलता। बाज दफा आपने दिए $10 और चीज निकल आई $50 की, वो भी आपका हक नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। और मनी एक्सचेंज करना वो ठीक है, वो ट्रांजेक्शन मनी की, क्योंकि आप दूसरी करेंसी ले रहे हैं ना, आप ऐसे नहीं कर रहे रुपी दे के, मेरा पुराना रुपी है आप नया रुपी दे दें, लेकिन पुराना रुपी आप 1 रुपया दें और वो आपको 75 सेंट्स दे, क्योंकि वो कह रहा है कि आपका पुराना था नोट, ये फिर गलत है। लेकिन जब आप मसलन डॉलर से रुपीज लेते हैं तो आप जाहिर है दूसरी कमोडिटी ले रहे हैं ना, दूसरी करेंसी ले रहे हैं, वो सही है। तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें आती हैं, लेकिन मुख्तसर हो जाती क्लास करने के लिए, फिर मुझे शॉर्ट करना पड़ता है। आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, वो किस मुतालिक है, उसमें क्या कंटेंट है? नंबर 1, उसमें ये कंटेंट है कि ये जो हम सुपरस्टिशियस चीजें बना लेते हैं ना, कि मतलब ये बदशगुनी है, इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं, या कुछ ही चीज को एक कोई बस नेकी समझ लेते हैं, बस ये नेकी है, और खुद ही बनाई होती है वो, उसकी कोई कुरान हदीस नहीं होती, खुद बनाई होती कि ये बस नेकी है, और दूसरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो अल्लाह ताला ने बताई हुई है, जो असल नेकी है। नंबर 2, किताल या जिहाद या लड़ना, इस्लाम में जंग, ये किस वक्त पे होती है, किन किन सिचुएशंस में जायज है, और किन लोगों के साथ कर सकते हैं, और असल क्या माना होता है जिहाद का, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको इतना मिसअंडरस्टैंड किया गया है और मिस इंटरप्रेट किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग शकुक व शुभात का शिकार होते हैं कि इस्लाम का असल स्टांस क्या है, इस पे क्या मौकफ है इस्लाम का जिहाद के बारे में, वो भी हम आज इंशाल्लाह देखें। जिहाद का मतलब किताल मुराद है। चलें जी, देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 189 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो सवाल करते हैं आपसे चांदों के बारे में, चांद जो नए चांद होते हैं उनके बारे में, हिलाल जिसको हम भी कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इस नाम से हिलाल दिखाया होता है, उस तरह वो करते हैं। तो हिलाल क्या होते हैं, नया चांद, क्रिसेंट मेरे ख्याल बोलते हैं इसको। तो सहाबा या दूसरे लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मुख्तलिफ सवालात किया करते थे। जरूरी नहीं सारे सवालात दीन के लिहाज से ही हों, दुनियावी लिहाज के भी सवाल होते थे, जैसे अब चांद के बारे में, इसका तो दीन से कोई ताल्लुक नहीं, तो बाहर के लोग भी आके सवाल करते थे। सहाबा तो बहुत ही कम सवाल किया करते थे। तो कोई लोग कोई भी मतलब है कि वो आपसे आके चांद के बारे में पूछते हैं, चांद के बारे में क्या पूछते हैं कि मतलब इसका क्या है इस्लाम के अंदर, या ये जैसे सूरज है, आपने कभी सोचा इस बात को कि सूरज तो घटता बढ़ता नहीं है, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, ये चांद का क्या बात है कि ये क्यों ऐसे है कि भाई छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर फुल मून हो जाता है फिर छोटा होने लगता है फिर गायब हो जाता है फिर नया निकलता है, तो ये क्या बात है, वो ये क्या क्या हुआ इसका, ये क्यों है? तो उसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कुल, ए नबी आप कह दीजिए, आप इनको बता दीजिए, क्या इसका जवाब, हिया मवाकीतु लिन्नासी वल हज, ये किस लिए है, मवाकीतु लिन्नास, लोगों के लिए वक्त बताने के लिए, वक्त बताना यानी डेट्स, तारीख बताने के लिए। इट्स सो इंटरेस्टिंग के जो है ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक कैलेंडर हमारे लिए आसमान में लगा दिया। आप अपने घर में कैलेंडर लगाती होंगी, कहाँ लगाती हैं, दीवार पे ना, और क्लॉक कहाँ लगाती हैं, क्लॉक भी दीवार पे लगा होता है, ये दो चीजें दीवारों पे टंगी होती हैं। अल्लाह ताला ने भी टाइम बताने का क्लॉक भी लगा दिया आसमान में, और कैलेंडर बना बता कैलेंडर भी लगा दिया तारीख बताने के लिए। कैलेंडर क्या है, चांद, और क्लॉक क्या है, सूरज। तो क्लॉक और कैलेंडर ये अपने बच्चों को बताइए, उनको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के कि क्लॉक और कैलेंडर देखो अल्लाह ने भी लगाए हैं। जब जमानों में घड़ियां भी नहीं होती थी, कैलेंडर भी नहीं होते थे, तो कैसे लोग चलते थे। देखिए ये जो इनका शमसी कैलेंडर है, जो इन्हें जैसे जो हम अब यूज भी करते हैं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर जो है, ये इससे तो बहुत ही मुश्किल है हिसाब किताब रखना, लेकिन चांद के देख के उसकी जो शेप्स हैं उनसे पता चल जाता है कि क्या तारीख है। अब हम चूंकि इसमें तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे कि जो सुभान अल्लाह नया मून होता है उसका किस तरह से शेप होती है, और उसके बाद जब वो फुल मून होके उसके बाद जो घटने लगता है तो वो दूसरी तरफ से घटता है, फिर उसकी शेप दूसरी होती है। तो आपको पता चलेगा चढ़ती तारीखें कौन सी हैं, और उसके बाद फुल मून का तो पता चल जाता है, चौदहवीं का चांद, फिर उसके बाद घटती तारीखें कौन सी हैं और अब कौन सी तारीख है, तो वो लोग आसमान पे देख के ही बता दिया करते थे। इसी तरह सूरज से टाइम, ये दोनों अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, ये नहीं कि सूरज क्रिश्चियंस का है और चांद मुसलमानों का है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज जो है देखिए आप, वो टाइम के लिए, अब टाइम आपको पता चल जाता है सूरज को देख के कि इस वक्त 10 बजे होंगे, इस वक्त अगर घड़ी नहीं भी हो, तो अल्लाह ताला ने कितना बड़ी हमारे लिए एक नेमत दी, एक रहमत बना दिया। आप सिर्फ अपने टाइम को ना ना सोचें कि ये आज के दौर के अंदर तो हमारे पास फोन ही है, उसमें ही सब कुछ है। पहले जमानों के अंदर क्या था, लाखों सालों से लोग रह रहे हैं। तो और हज, हज का बताने के लिए, अब रमजान का क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि हम तो चांद का सोचते ही क्या दिमाग में आता है, रमजान, लेकिन रमजान की पहले बात हो चुकी है इसलिए, और अब हज की बात की गई, क्योंकि हज के लिए भी चांद देखा जाता है ना कि कब हज की तारीखें आ रही हैं, और हज का कह के एक इंडिकेशन दे दी गई मुसलमानों को, ये मदनी सूरत है ना, सूरह बकरा, कि वो हज के लिए जाएंगे। इट्स एक इशारा उनको दे दिया गया, एक साइन है ये। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेक, नेक नेकी या नेक होना इसमें नहीं है, बे अंतातुर बुयो तमें जरूर यहा, कि तुम घरों में पिछली तरफ से आओ, इसका क्या माना हुआ। असल में यहां पर फिर ये चांद का बता के एक और चीज को जो हज उम्रे से मुतल्लिक थी उसको बताया गया। लोग उस जमाने में, उनके भी कुछ ऐसी सुपरस्टिशियस बातें थी ना, जैसे आज हमारे भी कई चीजें हैं, भाई ये हो जाए तो ये नहीं करना है, ऐसे हो जाए तो वो कहते हैं भाई अगर चांद ग्रहण लग जाए या सूरज ग्रहण लग जाए तो जो प्रेग्नेंट है वो पता नहीं बैठे नहीं या कोई काम नहीं करे या छुरी से ना काम करे या क्या ना करे, अगर वो कर लिया तो बच्चे को पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह की कई तोहमात हमारे अंदर भी होती हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है और बेशुमार है। तो उनके अंदर भी एक क्या चीज थी, वो कहते थे कि जब हम एहराम बांध के निकल पड़े हैं घर से, तो अब वापस घर आना ये बदशगुनी है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि वापस आ गया। जैसे वो कहते हैं ना कि अब पीछे से ना आवाज देना, पीछे से आवाज देना तो मतलब अब हमें हमारा काम ही नहीं होगा, जिस काम को हम जा रहे थे उसने अब होना ही नहीं, क्यों आपने पीछे से क्यों आवाज, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने भी रखी हुई है। तो उनके अंदर भी ऐसी चीज थी। फिर वो क्या करते थे, अब घर में अगर मसलन कोई चीज रह गई है तो अब जा तो सकते नहीं वापस घर, तो क्या करते थे, फ्रंट से नहीं फिर जाते थे, बैक से घर में दाखिल होते थे और वो चीज लेकर आते थे, या कोई भी काम है जो उनको अब रह गया, कई चीजें होती हैं, इंसान घर से निकलता है पीछे रह जाती है, फिर इंसान मुड़ के आता है, तो वो कहते थे अब फ्रंट डोर से नहीं जाना, अब हम बैक से जाएंगे। और अरबों में एक मुहावरा ये भी है कि दरवाजे से दाखिल हो, यानी स्ट्रेट करो हर काम, तो इसमें एक ये भी इंडिकेशन है कि उल्टे काम ना करो, जो भी काम करो स्ट्रेट करो, सीधा करो, क्योंकि आगे आ गया है कि पीछे से नहीं जाना, आगे से जाना है। तो अब ये इनके यहाँ नेकी समझी जाती थी कि देखो हम पीछे से जाते हैं घरों के, हम आगे से नहीं जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें कोई नेकी नहीं है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत तकवा की बात की बड़ी। देखो हम कितने, जैसे हम एक बना लेते ना जहन में कि बस नेकी ये चीज है, ये इसके अंदर बहुत नेकी है, खुद ही बनाई हुई है चीजें, और उनको नेकी समझ के उनको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, और बाकी जो चीजें अल्लाह ताला ने बताई ना उनकी कोई परवाह नहीं। मिसाल के तौर पे कोई एक चीज को मसलन, मिसाल ऐसे ही दे रही हूँ, एक मसलन कोई आदमी समझ ले कि दाढ़ी रखना बहुत बड़ी नेकी है, वो सुन्नत है बेशक और जरूरी है रखना, लेकिन बस इसी के अंदर नेकी है, और जिसने नहीं रखी तो वो उसके बारे में समझना कि ये तो कोई नेकी नहीं, हम बस सबसे बड़े नेक हैं, चाहे हम हराम खा रहे हैं, चाहे हमारे बुरे सलूक के लोगों के साथ, चाहे हमारे रवैयों को देख के लोग हमसे दूर भागते हैं, चाहे हमसे कोई बात कर ले तो हम खाने को दौड़ते हैं, चाहे हमारा दिमाग आसमान पे रहता है, हमारे अंदर तकब्बुर इतना है, वो उसकी नहीं कोई परवाह, बस ये चीज है कि हमारी ये नेकी है। बाज दफा हम नेकी का एक कोई तसव्वुर अपने जहन में बांध लेते हैं ना, और फिर या फॉर एग्जाम्पल बाज लोगों के जहन में ये होता है जिनके घर टीवी नहीं होता ना, वो बहुत नेक लोग होते हैं, देखा इनके घर टीवी नहीं है, तो देखो हम अपनी तरफ से एक बना लिया तसव्वुर। तो इस तरह कई चीजें हमने ना खुद ही बस एक नेकी के बना लिए हैं कि ये बस नेकी है, और उसके अंदर रह के हम इतने कंफर्टेबल होते हैं कि हमें ये नहीं परवाह कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। हमने पीछे पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, इतनी बड़ी आयत आयते बिर पढ़ी है, ये बिर क्या है, नेकी क्या है, अल्लाह ताला ने उसी को शॉर्ट करके यहाँ पे फरमा दिया वलाकिन्नल बिर मन तक्वा, लेकिन नेकी क्या है, तकवा है, वो जो सारी आयत है ना उसको एक लफ्ज तकवा में समो दिया, वो सारी आयत पढ़ लें वो नेकी है, और उसको एक लफ्ज में बयान कर दें तो वो तकवा है, कि गुनाहों से बचना और नेकी के लिए दौड़ना, उसका शौक रखना कि अल्लाह राजी हो जाए, गुनाह से इसलिए नहीं बचना कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अच्छा ये ऐसे करती है, इसलिए नहीं बच रहे गुनाह से, किस लिए बच रहे हैं, ये अल्लाह ना नाराज हो जाए, ये है तकवा। अगर आप गुनाहों से इसलिए बचते हैं ना कि हमसाए क्या कहेंगे, वो देख लेगी तो क्या कहेगी, उनके हम घर जा रहे हैं वो उनको पता चल गया तो वो बातें बनाएंगे, फलां हमारे घर आ रहा है वो चीज देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि अच्छा ये करते हैं, मैं इसको हटा दूं, ये नेकी नहीं है, ये तकवा नहीं कहलाता। तकवा ये है कि अल्लाह के खौफ से किसी बुराई को छोड़ा जाए, तकवा ये है कि नेकी को किया जाए अल्लाह की रजा के लिए, जैसे ये चीज करना कि किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी करना, ये नेकी को जाया कर देता है, इसी तरह अगर किसी गुनाह से आप सिर्फ इसलिए बचते हैं कि लोग क्या कहें वो ना कहें, और आपको अल्लाह का कोई खौफ नहीं बस लोगों का है, तो ये तो कोई तकवा नहीं, ये कोई गुनाह से बचना नहीं। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, लेकिन नेकी ये है कि तकवा इख्तियार किया जाए, उसकी तरफ तवज्जो दो। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, घरों से उनके फ्रंट से आओ, उनके दरवाजों से आओ, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर मुहावरा ये था दरवाजे से दाखिल हो, स्ट्रेट काम करो ना, ये तो एक साइड की बात है, लेकिन अब इनको क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें पीछे से आने की जरूरत नहीं, तुम फ्रंट डोर से आओ, असल नेकी की तरफ तवज्जो दो, ये खुद से एक कॉन्सेप्ट बना लेना, ये कुछ नहीं, हमें भी देखना चाहिए कि हमने कितनी चीजों को खुद ही एक बस नेकी का बना के एक तसव्वुर, और उसको हम समझने लगते हैं कि बस ये कर लूंगी तो मैं बस बहुत नेक हूं, या सुपरस्टिशियस बातें बताएं तो हम परस्ती में हम बहुत मुबतला रहते हैं, और कुछ लोगों को तो इतना वहम रहता है, हर वक्त वो वहम का शिकार होते, मरीज होते हैं वो वहम के, ये ऐसे हो गया तो उसने ये कह दी ना देखा इसीलिए ये हुआ, उसने वो बोल दिया तो इसलिए देखा ये ऐसे हो गया, तो भाई अगर लोगों के बोलने से या आपकी तरफ देखने से या कुछ कहने से ही चीजें हो जाती होती तो फिर तो दुनिया में अल्लाह ताला की तो नाउजुबिल्ला उसकी नहीं होती, बल्कि ये लोगों की बातों से ही चीजें हो जाया करती, तो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह के करने से चीज होती है, कुछ किसी के कहने, किसी के आने, किसी के जाने, किसी के आवाज देने, किसी दिन के होने, इनसे नहीं होती चीजें। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी फलाह पाने के लिए क्या जरूरी है? तकवा। आप देखेंगे इस लेसन में तकवा की कितनी तकरार है। पिछले में भी हमने तकवा पढ़ा था कि आप रोजा भी क्यों रख रहे हैं? तकवा के लिए। वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और लड़ो अल्लाह के रास्ते में। अल्लदीना युकातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं। किताल फी सबीलिल्लाह, इसकी बात आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बात आ रही है उन उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो ये बात आ रही है कि जिसके अंदर मुशरिकी ने मक्का, जिन्होंने मुसलमानों को निकाला था उनके घरों से, और उनकी सोचें कि किस किस्म का वहां का मक्का का माहौल अपने जहन में जरा लेकर आए कि किस किस्म के उनके लिए हालात पैदा कर दिए थे कि उनके लिए वहां पे रहना मुश्किल हो गया था, उनके लिए वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। इस्लाम का मतलब टॉर्चर था, इस्लाम का मतलब ये था कि वो आपकी जिंदगी खत्म कर देंगे। इस कदर ज्यादा उनके ऊपर जुल्म किया जाता था जो कोई इस्लाम ले ले आता था। तो यहाँ पे अब बताया गया कि अब हिजरत मदीना हो गई है। पहले मक्का के अंदर क्या हुक्म था मुसलमानों को? कुफू अईदिया करो, अपने हाथों को रोक लो, अब तुमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ये उन मुसलमानों को कहा गया था। मगर यहां पर अब ये याद रखिएगा, यहां पर किताल की इजाजत दे दी गई। वहां पे क्यों नहीं दी गई थी? इसलिए कि अगर वहां मुसलमान, मसलन हजरत बिलाल है, अब वहां पे वो एक बेबसी के उसके अंदर है, गुलाम भी हैं, और फिर मुसलमानों की तादाद भी कोई ऐसी नहीं है कि उनके साथ कोई खड़े हो सके, कोई पावर नहीं है मुसलमानों के साथ। अगर वो समझे उमैया उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, और वो भी एक उसको लगा देते, आखिर एक इंसान होता है मरने से पहले वो खुद भी किसी को मारता ही है, या उसके ऊपर कोई मसला हो रहा हो, कोई तशद्दुद हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा होता है, एक घूंसा तो वो भी लगा सकता है। लेकिन उसके बाद होना क्या था? क्या उन्होंने बचना था? मार दिए जाते। तो मुसलमानों को कहा गया था नहीं, यहाँ पे कितना भी जुल्म हो जाए, हजरत खब्बाब को कोयलों के ऊपर लिटाया जाता था, तो कहा गया कितना भी जुल्म हो जाए यहाँ पर आपने कोई रिटेलिएशन नहीं करनी, बदला नहीं लेना, आपने हाथ ही नहीं उठाना। कुफू अईदिया को, सूरह निसा में आता है कि मुसलमानों को कहा गया था रोको अपने हाथों को बस। लेकिन दैट्स इट नाउ, हमेशा रोके नहीं रखना। अब वक्त आ गया, अब हिजरत हो गई, अब मुसलमानों ने एक स्टेट कायम कर ली, अब ये सब हो गया, तो अब कहा गया अब आप बदला ले सकते हैं, अब आप लड़ सकते हैं, अब आप जंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सूरह हज में भी ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया उदीना लिल्लजीना युकातिलूना बि अन्नहुम जुलिमू, इजाजत दे दी गई लड़ने की उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया, उनको इजाजत दे दी गई। तो ये आयत उतरी थी और उसके बाद ये आयत आ गई है अब यहाँ पे भी कि चूंकि जुल्म किया गया अब आपको लड़ने की इजाजत है। अब जुल्म समझते हैं ना कि क्या इनके ऊपर जुल्म हुआ था। तो ये शुरू की यानी आयत में से है कि अब आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किन के साथ? ऐसे नहीं कि निकल पड़े तो हर तरफ ही लड़ने, नहीं, अल्लदीना युकातिलून, जो तुमसे लड़ते थे, यानी एक तो वो कि उनके साथ लड़ा जाए जिन जिन्होंने आपके साथ लड़ाई की थी, दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि उनसे लड़ाई की मुमानियत पता चल रही है जो आपसे लड़ने नहीं आ रहे, उनके साथ आपने नहीं लड़ना, उनसे ही लड़ना है जो आपसे लड़ने आ रहे हैं। कौन कौन नहीं आते लड़ने के लिए? मसलन कोई औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो अगर आपसे लड़ने नहीं आ रहे हैं तो आप भी उनसे जाके ना उनको मारो ना उनसे लड़ो, सिवाय उन औरतों के जो खुद जंगों में हिस्सा लेती हैं, खुद जंग के लिए आती हैं, उनके साथ तो लड़ाई करेंगे ही, लेकिन जो औरतें घरों में बैठी हैं उनके खामखा जाके मारना, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, इनके साथ जंग करना, उनको मारना, ये किसी तरह भी जायज नहीं। ये इससे हमें यहाँ पे इस्लाम के जंग के जो कवायद हैं, रूल्स हैं, वो भी पता चलते हैं। और इसके साइड नोट पे आप ये भी लिखने के इसी तरह वो लोग भी जो कि अपने दीन की, यानी जैसे होता है ना राहिब वगैरह लोग के रबानियत इख्तियार कर ले, दीन में इतने मशगूल हैं वो, अपने मजहब के अंदर ही लगे हुए हैं, अपनी इबादत में लगे हुए हैं, कोई पादरी हैं, कोई कुछ हैं, बस वो अपने गिरजों में ही रहते हैं, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, उनका ना किसी से कोई सरोकार, ना लेना ना देना, वो अपने उनको भी नहीं मारना। इससे पता चलता है सुभान अल्लाह, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी इस बात को, इस्लाम ऐसे नहीं कहता कि इसलिए कि वो काफिर है ना तो इसलिए उसको मार दो, तो वो तो फिर सबसे पहले इनको मारना चाहिए था, वो जो राहिब है और पादरी है, क्योंकि ये काफिर है, तो ऐसे नहीं है इस्लाम के अंदर। इसी तरह जो हैंडीकैप्ड है घरों में बैठे हुए हैं उनको खामखा जाके मारना, इस तरह वो लोग जो जंग में शरीक ही नहीं होते, उनका कोई लेना देना नहीं, वो इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं, उनको भी नहीं मारना। इनको मारने से मना किया गया, उन लोगों से किताल करो जो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं, तो इनसे फिर ये सब लोग एग्जेम्प्टेड हो गए। ठीक, वला तातदू, और तुम ज्यादती ना करना, देखना तुमसे कोई ज्यादती ना हो जाए। अब देखें ज्यादती क्या है, एक एक जाके औरतों बच्चों को मारा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया है। ठीक है, किसी बूढ़े जईफ को मारा जाए, किसी छोटे बच्चे को मारा जाए, अब आज की जंगें देख लें, ये इस्लाम को तो कहते हैं ना कि इस्लाम ने तो इस्लाम तो ऐसे जिहाद का कहता है, तो देखो तो सही कि इस्लाम कहता क्या है, तुम आज के वक्त में देख लो दरिंदगी है। आ गया वला तातदू, तुमने कोई ज्यादती नहीं करनी, या उनसे जाके लड़ना जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं आपको कहा, उनके ऊपर खामखास से हथियार उठा लेना, ये भी एक ज्यादती है ना, तो तुमने ज्यादती नहीं करनी। ये क्यों कहा गया, इसलिए कि जब जंग होती है ना तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि इंसान जाहिर अपने दुश्मन के आगे खड़ा होगा कि वो कुछ ना कुछ ज्यादती कर देगा, इसलिए क्योंकि दुश्मन के साथ उसकी बात है ना, वो दोस्त के साथ तो नहीं जंग कर रहा, जब दुश्मन आएगा तो फिर वो उसको उनसे नफरत है या उससे वो बदला लेना चाहता है, तो वो बदले में हद से बढ़ जाता है, नाक कान काट देता है, किसी को कत्ल करके भी उसको जो है ना उसकी लाश का मुसला करता है, ये भी ज्यादती है। तो ये इस्लाम ने कहा कि ज्यादती नहीं। और आपने देखा था ना पीछे हमने पढ़ा था क़िसास के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, ये अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, तो क्या मतलब था वहां पे, तो खैर एक जुर्म की बात हो रही थी ना कत्ल की, कि औरत ने कत्ल किया तो और वही औरत ही कत्ल की जाएगी, गुलाम ने कत्ल किया तो वही गुलाम ही कत्ल किया जाए। इसी तरह ये ऐसा नहीं है कि यानी किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई गलत किया है, अब किया किसी ने और उसका बदला लेने के लिए किसी और को मारा जाए, समझ आई। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे किसी के साथ, किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती की है, तो अब वो उठ के ये नहीं करेगा कि मैं भी इसकी बेटी के साथ यही करूंगा, किसी ने किसी का बच्चा हुआ कर लिया, अल्लाह माफ करे, तो वो नहीं, ये नहीं करेगा मैं भी इसका बच्चा हुआ कर लेता हूं, यही इसका बदला है, नहीं, वो जो मुजरिम है उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसके इर्द गिर्द के इनोसेंट पीपल को सजा दी जाए। ये ज्यादतियां होती हैं और अक्सर होती हैं जब दुश्मनियां होती हैं, अक्सर होती हैं जहां पे इंसान की किसी नहीं बनती, तो बदला लेने की शर्त ही है ज्यादती नहीं करनी, आगे भी आएगा उतना ही बदला जितने की तुम्हारे पास ज्यादती हुई, ये तकवा का तकाजा है, मुत्तकी ऐसा ही होता है। जैसे हजरत अली की मिसाल आती है ना कि वो एक जंग में थे, तो जंग में जब दूसरे ने जो जिसके जो यहूदी था जिसको मारने लगे थे, तो जब उसके ऊपर तलवार उठाई है और अभी वार करने लगे हैं, तो उसने थूक दिया उनके ऊपर। अब खुद सोचें जरा, जरा सी देर के लिए सोचें, एक दो दुश्मन है हाथ में है
और पहले ही उससे दुश्मनी है और पहले ही उसके साथ लड़ने के लिए खड़े हैं, ऊपर से उसने थूक भी दिया तो और ज्यादा मारेगा ना इंसान, कोई भी होगा तो क्या करेगा, और ज्यादा जोर से मारेगा कि अभी तुझे बताता हूं। लेकिन क्या इन्होंने क्या किया, तलवार वापस रख ली। वो भी हैरान कि ये क्या हुआ, जो कहते हैं पहले मैं अल्लाह की खातिर मारने लगा था, अब मेरे अंदर मेरा अपना गुस्सा आ गया। अल्लाह हु अकबर, ये होता है अल्लाह का डर, ज्यादती नहीं। यानी किसी के साथ भी जब जंग होगी तो वो कलिमतुल्लाह की बुलंदी के लिए होगी, या कोई ऐसी परसिक्यूशन है, आगे बात आ रही है हम इसको और बढ़ाते हैं, उसके उसके डिफेंस में उसको खत्म करने के लिए होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, याद रखना अल्लाह ज्यादती करने को पसंद नहीं करता, ज्यादती करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादती करेगा ना अल्लाह की नुसरत, उसकी मदद, उसकी बैकिंग, उसकी सपोर्ट उसके साथ नहीं होगी। जो अल्लाह के तरीकों को तोड़ता है, अल्लाह ने कहा कि ला ताता दू, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो करेंगे, इन्होंने हमारा एक मारा है ना, हम इनके 10 मारेंगे। इंडिया वहां पे जंग कर रहे हैं ना, तो हम यहां पे आके इनकी ट्रेनों में, इनके बाजारों में, इनकी बिल्डिंगों में बस हम खुली फायरिंग शुरू कर देंगे। क्यों इसलिए कर देंगे, क्योंकि ये भी तो हमारे कहीं मार रहे हैं। अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लदीना युकातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ते हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं, जो कोई अपने काम करने के लिए गया, अपने कारोबार करने के लिए गया, अपनी रोजी कमाने के लिए है, जो कोई वैसे ही बाहर निकला हुआ है, कोई बीमार है, कोई अपने इलाज के लिए जा रहा है, सबको मारने शुरू कर दोगे। सिर्फ किस लिए, वो फलां जगह पे इस कौम के लोग, या फलां जगह पे कोई और लोग, और कोई भी कहीं पे उनका गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं। तो तुम ज्यादती नहीं कर सकते, ये रूल है इस्लाम का। इसी वजह से आज जब मुसलमान ज्यादती करने पे उतर आए हुए हैं ना, तो अल्लाह की नुसरत नहीं है उनके साथ, ये सिर्फ अपनी जज्बात की तस्कीन हो सकती है, अपने गुस्से को निकालना हो सकता है, अपनी भड़ास निकालना। जब कोई खबरों में कोई चीज देख ली है तो अपनी भड़ास कैसे निकालें, अब कहीं ना कहीं जाके कुछ करना, ये फिर तो दुरुस्त नहीं है, ये तो सही नहीं है कि अपनी इंतकामी कार्रवाई के लिए ये ऐसे इकदाम किए जाएं। इस चीज को आपने खुद भी समझना है, और याद रखिए अपने घरों में भी इन आयात को शेयर करना है, ताकि हमारे बच्चों को पता हो, हमारे लड़कों को पता हो कि क्या चीज है इस्लाम में जिहाद, क्या चीज है लड़ना। ये जो आजकल जुनून है ना, ये जिहाद जिहाद करके पागल हो जाते हैं हम, ऐसे नहीं है कि कोई रूल्स के बगैर ही किसी सबको लूज छोड़ दिया गया। आप सोचें अगर अल्लाह ताला ने हर चीज के रूल्स हमें बताए तो क्या इसके नहीं बताए होंगे, उनकी हमें कोई परवाह ही नहीं, बस कोई भी पीछे लगा ले, कोई भी कह दे कि हाँ चलो अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, तो हम चल पड़ेंगे, ऐसे नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें आगे हम चलते हैं, या तो मैं आपको तो आगे बताती हूँ, अदरवाइज देखें जंग के कवायद में चले, आप बात चली है तो यहीं पर बता देती हूँ। एक ये भी है कि आप ना इमलाक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ब्रिजेस वगैरह हैं, ये ना दरख्तों को काट सकते हैं, ना आप ऐसी चीजों को, या जैसे जो चीजें जिनका कोई ताल्लुक नहीं, जिन लोगों का या जिन जगहों का, जैसे इबादत गाहें हैं, खानकाहें हैं, चर्च हैं, या कोई और इस तरह की चीजें, सिनागॉग्स हैं, उनको भी नहीं आप टारगेट बना सकते। इससे पता चलता है ये सारा कुछ ज्यादती में आ जाता है, इससे पता चलता है जो आज की जंगी चीजें हैं वो तो इस्लाम के है ही नहीं, कि ऊपर ऊपर से बम गिरा दिए, सारी आबादी को मिटा के रख दिया, तहस नहस कर दिया, उसमें इंसान भी गए, जानवर भी गए, चरिंद परिंद भी गए, खेतियां भी गई, दरख्त भी गए, बिल्डिंग भी गए, सब खत्म हो गया। ये तो इस्लाम में नहीं है। या कोई बम बांध के किसी जगह चला जाता है, कोई खुद को हमला कर लेता है, कोई गन लेके जा कहीं घुस जाता है, वहां पे बेदरेक कत्ल कर रहा है, ये इस्लाम में नहीं है, ये अपने गुस्से हैं, ये इस्लाम में नहीं है। और उससे पूछा जाए इन्होंने क्या किया, इनका क्या कसूर है, तो वो खुद भी नहीं बता सकता, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। फिर किससे लड़ रहे हो तुम? तो ये कुछ और तो कहला सकती है, मगर अल्लाह के दीन की खातिर लड़ना नहीं होता। ये कोई सरफिरा किसी दिन तैश में आके किसी मासूमों को, निहत्ते लोगों को जो आपको कुछ नहीं कह रहे, उन पर हथियार उठा ले और उनको खत्म करे। तो अक्सर हमारे सामने ये याद रखिए, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर ही कुछ कराए जाते हैं काम इस किस्म के, और हम फौरन सोचते हैं बस अल्लाह रसूल का नाम ले लिया ना, फी सबीलिल्लाह ना, बस किसी ने फी सबीलिल्लाह क्या कह दिया, हम तो वहीं पे बस बिछ जाते हैं। आप ये नहीं कभी सोचते कि शैतान भी तो अपने काम करवा सकता है ऐसे, उसको पता है इंसान की कमजोरी क्या है, उसको पता है ये अल्लाह के नाम पे कुछ भी कर लेगा, तो इसको तो ये चारा डालो, वो फिर जब ऐसे काम करवा लेता है तो उससे क्या होता है? क्या इस्लाम का नाम बुलंद होता है? क्या उससे पावर हासिल हो जाती है इस्लाम को? क्या क्या मिलता है? तो इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है दीने इस्लाम की भी, और लोगों को जो इस्लाम की तरफ आने में रगबत रखते हैं उनको भी दूर किया जाता है, और जो ऑलरेडी इस्लाम में है उनके अंदर भी शकुक व शुभात पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कैसा दीन है, क्योंकि जो बंदा ये काम कर रहा है वो इस्लाम के नाम पे कर रहा है, तो वो इस्लाम के कॉज को फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा है, वो इस्लाम की कोई खदमत नहीं कर रहा, उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है। तो ये हमें सोचना चाहिए, कोई भी नारा है तकबीर कह दे तो हम बिछ ना जाया करें, हमारे आंसू ना निकला करें कि ओ नारा है तकबीर कह दिया बस इसके पीछे चल पड़ो। अपनी अकलें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, होश से काम लेना चाहिए, देखें अपने कुरान को, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, फिर किसी को समझें कि ये सही भी मुझे बुला रहा है कि नहीं। आजकल ऐसी चीजें इंटरनेट पे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं, मस्जिद में बाज दफा ऐसे लोग बैठे होते हैं जो नौजवानों को ट्रैप करते हैं। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है सब्जेक्ट को जानना, हम डरते हैं सब्जेक्ट को जानने से भी, या तो इतना खौफ है या फिर इतने पागल हो जाते हैं कि इस शौक के अंदर कि हम तो बहुत नेकी का काम कर गलत जगहों पे जाकर फंस जाते हैं। ये इससे ज्यादा क्या मुझे बताएं, क्लियर बात होगी, वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। इतनी कोशिशें हमारी दीन की दावत देने के लिए अगर हो ना, जितनी हम ये इस किस्म की सरगर्मियों में लगाते हैं, तो कितना दीन फैल जाए, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं होती, सिर्फ ये मार कुटाई की तरफ होती, क्योंकि अक्सर लोगों की वो गुस्से और चीजों पे होते हैं, वो निकालते इस पे। वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, तुम कत्ल करो उनको जहां भी तुम पाओ उनको। अब ये क्या बात हुई, इस आयत को भी लेके गैर मुस्लिमों ने इतना प्रोपगेंडा किया, देखो जी इनके कुरान में क्या है, इनके कुरान में तो यह है कि जहां पे ये मिले उनको मार दो। खुदा के बंदो आगे भी तो पढ़ लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है, किनको कहा जा रहा है। जरा सा भी आप अगला लफ्ज पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी आपको किसी दिन ये आयात मुंह पे रख के कहेगा ये देखें आपके तो कुरान में ही है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं हाय जैसे पता नहीं अब हम कितने मतलब अपोलोजेटिक हैं, या हमें खुद समझ नहीं आती कि हम कैसे जवाब दें। ये आज की जरूरत है कि आप इन आयात को समझें। तो किसको कहा जा रहा है, जहां तुम पाओ इनको, इनको कत्ल करो। और आगे पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ, वह अखरी जू हम मिन हई तो अखरा जू कुम, और निकालो इनको जहां से उन्होंने निकाला तुमको। अब ये आयात इनके बारे में आता है कि ये जिस वक्त कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया का वाकया हुआ था, तो उस वक्त नाजिल हुई थी ये आयत, कि जिसमें बताया गया कि यानी सुलह हुदैबिया में आपको आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ उम्रा करने के लिए गए और उनको रोक दिया गया और कहा गया अगले साल आओ। अब अगले साल से जिस वक्त उम्रा कजा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जाने का इरादा किया, तो उन्होंने सोचा कि अब ये इन्होंने पिछले साल तो हमें जाने नहीं दिया, अब अगर हम इस दफा जाते हैं, पता नहीं है कि हमें जाने देते हैं नहीं जाने देते, या ये ना हो कि वहां पे हमारे साथ जंग शुरू कर दें, हम जा रहे हैं आराम में, वहां पे वो अपना मुआहदा तोड़ के और हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें, तो हम क्या करें फिर? क्या हम फिर जंग कर सकते हैं उनके साथ? क्या हम उनके साथ लड़ सकते हैं? तो फिर कहा गया, अगर वो तुमसे किताल करें तो फिर तुम भी जहां उनको पाओ तुम भी उनसे किताल करना, फिर तुम्हें भी इजाजत है, ठीक है? और अगर जिन्होंने तुम्हें वहां से निकाला है, तुम भी उनको निकालो फिर वहां से। और ये आप किसी भी आम जिंदगी में कैसे रख सकते हैं, वाखरी जो मिन है इसु अखरा जो को, किसको आप कहेंगे निकालो तुम उनको वहां से जिन्होंने निकाला तुमको? कैसे इसको समझेंगे जब तक इस चीज को, इस बात को, इस बैकग्राउंड को ना समझा जाए कि ये उनके लिए थी क्योंकि उन्होंने उनको उनके घरों से निकाल दिया। बता और फरमाया, वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, याद रखो फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। फितना क्या चीज है? एक तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है ना कि देखें इस्लाम तो इतना पीसफुल रिलीजन है, तो इसमें ये कैसी बात हुई कि इनको कत्ल करो जहां पे तुम जहां तुम इनको पाओ, और ये तो बहुत बुरी बात हो गई ना। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, ये वल फितना तो अशद्दु मिन कत्ल, फितना तो तुम ये सोचते हो कि अच्छा इनको मारना बुरा है, तो फितना क्या है? फितना तो कत्ल करने से भी ज्यादा बुरा चीज, बुरी चीज है। वो क्या चीज होती है फितना? फितना है रिलीजियस परसिक्यूशन, मजहबी जबर जिसको कहेंगे आप। और मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, फितना क्या चीज है? फितना वो है कि किसी को सिर्फ इसलिए सताया जाए, मारा जाए, जुल्म किया जाए, उनकी औरतों को की इज्जतें लूटी जाएं, उनको कहीं वो महफूज ना हो, सिर्फ किस लिए? कि वो एक अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, या वो इस्लाम क्यों लेकर आए? इनको इस्लाम से फेरने के लिए। ये होती है रिलीजियस परसिक्यूशन, के दीन को प्रैक्टिस नहीं तुम कर सकते, तुम इस दीन पे कैसे आ गए, तुम इसको छोड़ो, ये है रिलीजियस परसिक्यूशन, ये है मजहबी जबर। तुम्हारा कसूर क्या, हम क्यों तुम्हें मार रहे हैं, तुम ये क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, तुम क्यों इस्लाम लेकर आए, तुम मुसलमान क्यों हो? ये है फितना, समझ आई? इसको कहते हैं फितना। ये इतनी बुरी चीज है, ये इतनी बुरी चीज है कि ये कत्ल से भी ज्यादा बुरा है, इसको कहा गया, ये जंग से भी ज्यादा बुरा है। इतनी बड़ी बुराई है, क्योंकि ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। इसके ऊपर तो अल्लाह ने जिन जो उसका नाम नहीं लेते, उन जो उसका इनकार करते हैं, जो उसके साथ शिर्क करके उसको गाली देते हैं, ये तो अल्लाह ताला का तहम्मुल है, उसका सबर है कि वो उनको भी रहने देता है, वो उनको भी खिला रहा है पिला रहा है। लेकिन अब ये मतलब नहीं कि वो जो अल्लाह का नाम लेवा है उसको तुम पकड़ के इतना उसके ऊपर जुल्म करो सिर्फ इसलिए कि क्यों तुम अल्लाह का नाम लेते हो। ये तो हक हक ही ये था इस जमीन पे रहने का कि तुम अल्लाह का नाम लो, तुम अल्लाह के दीन पे चलो, यही हक था। लेकिन वो तो हक उससे छीनने के लिए खड़े हो गए, तो ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ये नहीं उसको गवारा। फिर कैसे नहीं हो सकता कि तुम कोई इंसान कहता कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूं, मैं इस्लाम में एंटर होना चाहता हूं, तुम उसके साथ वो हाल करो कि वो इसे फिर के रहे? जैसे आज आप देखें दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जहां पे ये हो रहा है कि इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हें हम ये करेंगे, तुम मुसलमान क्यों हो? यानी इतना किसी को मजबूर कर दिया जाना कि वो इस्लाम को ही छोड़ दे, इतना उसके ऊपर जुल्म करना, इतना उसको यानी गैर महफूज कर देना, इनसिक्योर कर देना, या उठा के डिटेंशन कैंप्स में डाल देना, या वहां पे ब्रेन वॉशिंग करना, या ऐसा जबर करना उनके ऊपर कि वो अल्लाह का कलिमा बोले तो उसकी जुबान खींच ली जाए, ये दुनिया में बहुत जगह। और हम आज सोचते हैं ना कैसे मक्का के अंदर होती होगी रिलीजियस परसिक्यूशन, वो अगर आपने देखनी तो आज ही देख लें, 1400 साल पहले का क्या बात करनी है, आप आज देख लें आज के हालात के अंदर कैसे होती है। ये वर्स है, तुम कहते हो कत्ल बुरी चीज है, ये उससे भी वर्स है कि किसी को इस्लाम को छोड़ने पे मजबूर किया जाए, किसी को सजाएं सिर्फ इसलिए दी जाए वो मुसलमान है, बस ये उसका कसूर है। और याद रखें, इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड होके कह सकते हैं कि तमाम अदियान ये इसलिए दूसरों से दुश्मनी रखते हैं कि दूसरा किसी और मजहब से क्यों है, जबकि इस्लाम इतना टॉलरेंट है रिलीजन, सुभान अल्लाह। हालांकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह के कलमा को ही बुलंद होना चाहिए, इसके अलावा किसी और का हक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए इस प्लेनेट अर्थ पे। लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला इकराह फि दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हम नहीं तुम्हें कहेंगे कि तुम जरूरी मुसलमान हो जाओ, हम नहीं तुम्हें इस बात पे मारेंगे कि तुम हिंदू क्यों हो, तुम क्रिश्चियन क्यों हो, तुम यहूदी क्यों हो, तुम मुशरिक क्यों हो, हम नहीं कभी तुम्हें इस बात पे मारेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, अल्लाह ने फ्रीडम दी है। जो चाहे, अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, जो चाहे काफिर रहे, जो चाहे मुसलमान हो जाए, जो चाहे मोमिन हो, अल्लाह ताला ने ये दी है फ्रीडम। हम तो नहीं किसी से छीनते, किसी को नहीं देखा होगा किसी को मारते हुए कि मार मार के उसको मुसलमान बना रहा, तुम हिंदू क्यों हो, तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं। हम कहते हैं नहीं, हमारे तुमने खुशी से होना है तो हो, लेकिन हम नहीं तुम्हें कहेंगे तुम अपने रिलीजन में रहो, तुम्हारा दिल कायल होता है तुम आओ, लेकिन अदरवाइज तो देखें आज दूसरे लोग अपने मजहब के नारे लगवाते हैं लोगों से कि बोलो हमारे खुदा का नाम तो वे तुम्हें छोड़ेंगे। इस्लाम नहीं ये कहता कि तुम किसी से जबरदस्ती किसी मुशरिक को कहोगे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं, हमें नहीं जरूरत इसकी। इस्लाम बेनियाज है इससे, पूरी दुनिया भी इस जमीन के ऊपर शिर्क करे तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे मेरी बादशाही में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आता। अगर पूरी दुनिया हर जिन और इंस और बूढ़ा और जवान और बच्चा मर्द और औरत सब तुम में सबसे ज्यादा गुनाहगार के दिल की तरह हो जाए तो मेरी बादशाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को जरूरत नहीं है। और तुम्हें जरूरत होगी कि तुम्हारे काम होंगे किसी के तो वो चाहता है कि और हो जाए उसको पूजने वाले, तुम्हारे जिनको तुम खुदा मानते हो उनको जरूरत होगी, हमारे रब को तो जरूरत नहीं। उसके लिए तो आज सारी कायनात बिछी हुई है, जमीनों आसमान जिसके सामने इताअत गुजार है और जो कुछ इसमें है। तो जो कोई खुशी से आना चाहे, बी प्राउड कि आप मुस्लिम हैं, ये नहीं कि हम हाय अब बिछ रहे हैं, अरे ऐसे हो रहे हैं कि हाय पता नहीं हमारे कितने कसूर हो गए कि हम मुसलमान, नहीं। ये वक्त है सर उठा के जीने का, ये आप सर उठा के जिए कि आप हक पे हैं, शर्मा के नहीं, झिझक के नहीं, डर के नहीं। वो फितना अशद्दु मिनल कत्ल है, कोई भी फितना बर्पा करेगा तो फिर वो उसको उसका साथ मुकाबला किया ही जाएगा ना, क्या करे। एक बंदा मसला है कि वो कॉर्नर कर दिया जाए, उसको इतना मारा जा रहा है उसको कॉर्नर के, क्या वो हाथ ना उठाए। हमारा दीन ये नहीं कहता उनकी तरह ईसाइयों की तरह कि जैसे ईसाइयों के अंदर है इधर थप्पड़ तुमने मारा ना ये लो दूसरा भी गाल इधर भी मार दो, इस्लाम कहता नहीं, जिसने जो किया है उसका उसका बदला है, क्योंकि दिस इज नेचुरल इंसान, लेकिन बदला फिर उतना ही होगा, बस आगे आ रही है बात। वला तो कातिलुहुम इंदल मस्जिद अल हराम, और देखो इनको साथ ना लड़ना तुम पास मस्जिद हराम के, हत्ता युकातिलुकुम फी। अब ये बता नहीं रही है आपको कि ये उस वक्त की आयत है, कौन इसको आज के वक्त के अंदर लाके कह देगा मस्जिद हराम के पास लड़ना, किधर से आप फिट करोगे इसको। तो जब कोई आपके सामने ये रखे उसको कब पूरी आयत तो पढ़ लो, मस्जिद हराम के पास ना लड़ना, तो ये किसकी बात हो रही है, कुछ सोचो तो सही। यानी अगर वो आपको ड्राइव कर दे इतना आपके साथ लड़े, तुमने नहीं लड़ना, तुमने स्टार्ट नहीं करना, यानी ये कहा जा रहा है हत्ता युकातिलुकुम फी, यहां तक कि वो लड़े तुमसे। अच्छा अब क्या हुआ था, जब आपको याद होगा अगर जिसने सीरत पढ़ी हुई है कि सुलह हुदैबिया का जो मौका था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उमरे पे आ रहे थे, जिसमें उन्होंने रोक दिया था, तो हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो इतनी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह इनको इंस्टिगेट करें, किसी तरह इनको भड़काएं, ये कुछ ना कुछ करें। अब ये कुछ करेंगे ना तो फिर हम इनके ऊपर हमला, हम कहेंगे देखा इन्होंने तो ऐसे किया था, क्योंकि जाहिर है एक हुरमत वाली जगह की हुरमत है, वहां पर वो भी उनके अंदर भी थोड़ा इतना था कि हम नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा कत्लो गारत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तुम लड़ो उनसे मस्जिद हराम के पास, तुम्हें अलाउड नहीं है, ये हरम है, लेकिन अगर वो तुम्हें मारे तो अब ये नहीं आपको बैठ जाओ भाई हम क्या करें, ये तो जगह की तकद्दुस है, हम तो नहीं ना यहाँ पे लड़ सकते, तो इनको मारने दो हमें और आप उनको मारने दे, नहीं फिर तुम भी वापस मारोगे। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कौन है दुनिया में जो कहेगा कि हाँ हम लेट जाते हैं आओ हमें मारते जाओ, हम इतने अच्छे लोग हैं लेकिन हमने नहीं कुछ करना, कौन ऐसे करेगा। आप मुल्कों को देख लें, खुद दुनिया में मिसालें हैं, कोई एक मुल्क दूसरे के ऊपर इस तरह की कोई करता है तो दूसरा मुल्क इतने बदला लेता है या नहीं लेता, जब उसके अंदर इतनी अगर ताकत होती है तो लेता है ना। हाँ वो बेचारा खुद बिल्कुल मरा हुआ हो तो फिर नहीं लेगा, लेकिन जिस मुल्क में ताकत वो लेता है ना बदला। तो फिर मुसलमानों को बुरा करने की क्या बात है कि वो क्यों कहा गया उनके कुरान के अंदर, कहा जा रहा है भाई जब तुम्हें निकालोगे तुम भी इनको निकालो, वो तुम्हें मारेंगे तो तुम भी मारो लो उनको। हालांकि पिछले 13 साल मक्की जिंदगी के कोई आयत बता दें कि जिसके अंदर कहा गया हो कि आपने भी मारना, या जिसमें मुसलमानों ने मारा हो, वो सबर के दिन थे ना। और अब जब मुसलमानों के पास ताकत आ गई, ये इतने कम से कम एस्टेब्लिश हो गए, उनसे तो कम ही थे ताकत में लेकिन फिर भी इतने एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो अब कहा गया नहीं तुम अब ऐसे नहीं कि मार खाते रहो। और कसूर किया इनका, ठीक है या तो वो कोई कसूर हो सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं। आज हर चीज की फ्रीडम की बात होती है, विमेन लिब की बात है, ये इस चीज की फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ये, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होनी चाहिए कि जिसका जी जो जी चाहे वो उस रिलीजन को अपनाए, क्या ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसाफ वाला इंसान कहेगा कि होनी चाहिए, चाहे कोई मुसलमान नहीं भी है वो भी ये कहेगा। तो यही तो कहा जा रहा है ये फितना नहीं बर्पा करना, इतना अशद्दु मिनल कत्ल, फइन कातलूकुम फक्तलूहुम, फिर अगर वो लड़े तुमसे तो वो कत्ल करें तुमको तो तुम भी उनको कत्ल करो, कजाले का जजाउल काफिरी, पहल नहीं करनी लेकिन जंग का आगाज हो जाए तो फिर यही जजाए काफरों की, अगर वो इनिशिएट करते हैं तो फिर तुम भी लड़ोगे। जो ना खुद दीन पे चलते हैं काफिर हैं, दूसरों को भी नहीं चलने देते तो फिर उनके साथ तो यही होगा ना। फइनतहाउ फइनल्लाह गफूर रहीम, ये देखें आप ये भी आयतें कभी पढ़ लिया करें ना, पिछली आयत को तो लेके बहुत मुसलमानों के सामने उछाला जाता है कि देखो जी इनके ये, तो ये अगली आयत क्या कह रही है, फइनतहाउ फिर अगर वो बाज आ जाए, कौन वो दुश्मन जो है तुम्हारा, जो तुम्हारे तुम्हें घरों से निकालने वाला है, फिर जो तुम्हारे पर ये जुल्म करने वाला है, फिर जो तुम्हारे से लड़ने के लिए आया, फिर भी अगर वो जंग से बाज आ जाए, इस फितना को क्रिएट करने से बाज आ जाएं, फइनल्लाह गफूर रहीम, तो फिर ये नहीं होगा कि अब तुम उनको मारो इसलिए कि पहले तो इन्होंने ऐसा किया था ना, मुझे तो वो नहीं भूलता जब इसने ये किया था, नहीं अब उसने सरेंडर कर दिया, अब वो कहता है कि मैं नहीं सताऊंगा, अब वो जुल्म और उसको छोड़ देता है, तशद्दुद को छोड़ देता है, तो अल्लाह गफूर रहीम। और आप देखें अबू सुफियान को, अबू सुफियान ने जब फतह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया, कोई पिछली उनको बात नहीं दोहराई गई कि आप तो उहद में आए थे और पूरा लश्कर लेके और आपने तो हमें इतना नुकसान पहुंचाया था, आप तो थ्रू आउट मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे यहां से बैठे हुए, हम आपको कैसे माफ कर दें, नहीं फइनतहाउ फिर वो बाज आ जाए, फइनल्लाह गफूर रहीम। ये देखें इस्लाम की अजमत आप देखें इसमें, ये होता है बड़ापन। फिर ये नहीं हुआ तो तुमने ये किया था, वो वाला वक्त याद करो जब तुम ऐसे करते थे, हमें तो नहीं भूला ना तुम भूल गए हो, नहीं। इसको एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में भी देखें आप, छोटे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह रख के कि एक दिन आप पावरफुल होती हैं, पहले आपने बड़ी मारें खाई, बड़ी बातें सुनी, बड़ी वो की, एक दिन आप पावरफुल हो जाती हैं, एक दिन आपके हाथ में घर की हुकूमत मसलन आ जाती है और कोई आपके सामने नीचे हो जाता है, तो अब इसके बाद क्या है, अब पुरानी चीजों को लाके ना किया जाए, अब क्या है, अब छोड़ दो, अब माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करने वाला है, ठीक है। तो इसी को घर की टेरिटरी में भी रख के आप देख लें, वकातिलू हत्ता ला तकुना फितनतु व यकुन अद्दीनु लिल्लाह, और लड़ो उनसे यहां तक के फितना ना रहे और अल्लाह का दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, दीन अल्लाह के लिए सिर्फ हो जाए। क्या मतलब है इसका कि अब अगर एक दफा लड़ाई शुरू होगी ना, अव्वल तो पहले तुमने लड़ाई शुरू नहीं करनी, लेकिन लड़ाई अगर शुरू हो गई है तो अब ये रुकेगी नहीं जब तक फितना खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। फितने को खत्म करना फिर तुम्हारा गोल होना चाहिए। फिर सिर्फ अगर वो सरेंडर कर दें कि भाई वो भाग गए हैं वापस, तो अब आप कहें छोड़ दो अब इनको, नहीं, लड़ो उनसे जब तक फितना ना खत्म हो जाए। एक एक ये भी बात याद रखें, बाज लोग समझते हैं कि इस्लाम में वॉर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऑफेंसिव वॉर भी हो सकती है, लेकिन वो किस सूरत में, कि कहीं फितना है तो फितने को खत्म करना, कहीं जुल्म हो रहा है तो उसको खत्म करना है, लेकिन वो कौन करेगा? याद रखिए, ये वाले जो अहकाम है ना, वकातिलूहुम हत्ता लकुदर और वकतलूहुम, आप देख रहे हैं जमा के सीधे आ रहे हैं, एक भी बंदे को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स को नहीं, नमाज की तरह ये नहीं है, रोजे की तरह ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स को कहा जा रहा हूं यहाँ पे, किसके लिए, पूरे माशरे की बात है, यानी हकूमती लेवल पे डिसाइड होगा, और हकूमत ये करेगी कि कहीं जाके किताल कर रही है, अल्लाह के रास्ते में लड़िए, इसका ऑर्डर कौन देगा? हकूमत। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हकूमत होती है ना, वो देखती है कि एक जगह पे एक आदमी दूसरे को कत्ल कर रहा है, तो उस कातिल को सजा दी जाए। क्या ये इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है या फिर हकूमत के हाथ में होता है? हकूमत के होता है ना। अगर इंडिविजुअल के हाथ में दे दिया जाए तो क्या होगा? वो तो फिर मुसीबत ही पड़ जाएगी, तो कोई किसी को कत्ल करेगा, कत्ल किसी ने किया हुआ, उसने दूसरे को कर दिया, फिर उन्होंने आके इसको कर दिया, फिर उन्होंने इसके 10 मार दिए, फिर इसने उनके 4 मार दिए, फिर उन्होंने इसकी औरतें उठा ली, फिर उन्होंने उनकी भी औरतें, ये तो फिर तो ये ऐसा नहीं होता, ये वो अंधा कानून नहीं है। क्या होगा? अदालत फैसला करती है, फिर सजा दी जाती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह किताल फी सबीलिल्लाह भी इंडिविजुअल काम नहीं है कि कोई मस्जिद में खड़ा होके कि इमाम मस्जिद कह दे जी अब ऐसा होगा, कोई खड़ा होकर ये फैसला कर दे जी अब से जिहाद शुरू हो जाएगा, फलां मुल्क के खिलाफ, फलां लोगों के खिलाफ, अब हम बस किताल करने जा रहे हैं। किताल जो है वो जिहाद की, यानी जो लास्ट जो उसकी फॉर्म है ना, वो है किताल। इट्स अ पार्ट ऑफ जिहाद, बट टोटली जिहाद किताल नहीं है, किताल इज पार्ट ऑफ जिहाद, ठीक है, एक सेगमेंट समझने जिहाद का। जिहाद तो बहुत ब्रॉड है, जिहाद तो स्ट्रगल को कहते हैं। आज इतना ये लफ्ज बदनाम कर दिया कि ये लफ्ज भी ऐसे लगता है जैसे कि ये पता नहीं कोई, अल्लाह ताला माफ करे, वो गाली है, ऐसा नहीं है। अब जब हमें समझ खुद नहीं है, हम किसी को भी क्या समझाएं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस में होगी, बल्कि जब जुल्म हो रहा, मसलन कहीं फितना है और एक इस्लामी हुकूमत है जिस जो ये डिसाइड करती है कि ये फितने को खत्म होना चाहिए, अब सेकेंड उसकी शर्त ये भी है कि उसके अंदर इतनी पावर हो फिर कि वो फितने को खत्म कर सके, तो फिर वो लड़ेगी इस फितने को खत्म करने के लिए। नंबर 1 क्या समझ आई? कि ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है कि वो फैसले करें, कि वो घर बैठे फैसले कर रहे हैं या कुछ छोटा सा ग्रुप बना के उसमें फैसले हो रहे हैं और खुद ही चल पड़े करने, कुछ ऐसे नहीं होगा, हकूमती लेवल के ऊपर होगा, ठीक है, स्टेट बेस्ड, बिल्कुल। नंबर 2 क्या बात है इसके अंदर, कि फिर वो हकूमत भी इतनी काबिल हो कि वो उसके अंदर ताकत हो कि वो फितने को खत्म कर सके, ये ना हो कि वो खुद बेचारी बिसाखियों पे खड़ी हुई है, वो खुद मरीज है, बीमार है, वो मुल्क भी इतना गरीब है, वो मुल्क भी है, वो तो खुद अपने आप को नहीं उठा सकता, वो उसने किसी का मुकाबला क्या करना, तो फिर भी नहीं उसके ऊपर लाजिम के वो ये करे क्या? तो कोई असूलो जवाबित होते, अंधाधुंध कोई चीज नहीं होती, जैसे आज बिल्कुल ही अंधे हो गए, अंधाधुंध, जिसका दिल करता है वो उठ के तलवार उठा लेता है, जिसका दिल करता है वो उठ के हथियार उठा लेता है, और बस समझता है कि बस मैं तो अल्लाह के रास्ते में निकल खड़ा हूँ। ऐसे नहीं है, ये देखो नमाज रोजा नहीं है जो आपको इंडिविजुअली एक एक को हुक्म दिया गया। तो अब जब वो तुम्हें मजबूर कर दे, तुम उनसे वो स्टार्ट कर दे और तुम उनसे जंग करने शुरू कर दो, तो अब ये जंग ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी, अब जब तक ये फितना ना खत्म हो, क्योंकि असल मकसद ही है कि फितना खत्म हो, ये जबरी निजाम खत्म हो, ये दीन से लोगों को रोकना ये खत्म हो, मजहबी आजादी मिले लोगों को, ठीक है। और ये कितना बड़ा फितना कि वो जगह आप सोचें, जिस जगह को आपने फर्स्ट पारे का अगर एंड देखा हो, तो आपने देखा, पढ़ा आपने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को बिल्ड कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, वो उन्होंने ये घर क्यों बिल्ड किया, वो अल्लाह से क्या दुआएं कर रहे हैं कि ये एक तौहीद का मरकज, शिर्क ना यहाँ पे हो, और वो जो घर बना ही इसलिए था कि ये तौहीद का सेंटर बने, वहां पे ही आके शिर्क शुरू हो गया, वहां पे 360 बुत रख दिए उन्होंने, ये तो था ही अल्लाह ताला को कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह का कलमा यहाँ पे लेने के लिए। और इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआएं कितनी की, और कितनी उन्होंने उनकी जो लास्ट जो विल थी, जो उन्होंने जो वसीयत भी की थी याकूब अलैहि सलाम ने, और उससे पहले इब्राहिम अलैहि सलाम, और इनकी भी बात आती है कि उन्होंने क्या कहा, फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मरना ना मगर मुस्लिम। उनकी तो जिंदगी का एम ही तौहीद था, तुमने उनके बनाए हुए घर पे भूत रख दिए, तो इसको तो भूतों से पाक करना ही है। ये भी फितना है कि यहाँ पे शिर्क हो रहा है। और फिर देखे, किसी का राइट नहीं था कि किसी को हज और उमरे से रोके, कभी नहीं किसी का राइट। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया कि उमरे से ही रोक दिया, और हज पे आने की तो क्या किसी को इजाजत ही नहीं थी, कुछ सर कटवाने थे। तो इन्होंने क्या समझ लिया कि ये अब हमारी इजारादारी, हम मालिक हो गए इस घर के, हम जिसको चाहेंगे इजाजत दें आने की, जिसको चाहेंगे नहीं आने की इजाजत दें, ये उनके हाथ में नहीं था। तो इसलिए ये हमें यहाँ पे समझ आती है कि फितना क्या चीज होती है, और फितने से रोकने के लिए, फितने को खत्म करने के लिए फिर लड़ना, यहाँ पे उसको कहा गया कि ये तुम्हारा फिर एम होना चाहिए। और क्या हो जाए, वह यकून दीन लिल्ला, और दीन अल्लाह का लिए हो जाए, यानी इस जगह में फिर और कोई दीन बाकी ना रहे, फिर अल्लाह की हाकमियत आ जाए यहाँ पे, फिर ये शिर्क यहाँ से फिर खत्म हो जाए, फिर तब तक लड़ना होगा। फला उदवान इल्ला अला ज़ालिमीन, फिर अगर वो रुक जाए तो तुमने नहीं कोई ज्यादती करनी, मगर सिर्फ फिर जालिमों के ऊपर होगी, जो जालिम है, जो फिर भी नहीं रुकते, और फिर भी फतह मक्का के मौके पर भी बाज कुफार को मारा गया था, कत्ल किया गया था, क्योंकि देखे को जो नहीं रुक रहा, जो जो तुला हुआ इस चीज के ऊपर, तो फिर उसके साथ तो फिर यही होगा। लेकिन अदरवाइज जो फिर रुक जाए, जो सरेंडर कर दे और नहीं लड़े, और ये फितना वगैरह खत्म कर दें, शिर खत्म हो गया, छोड़ दिया इन चीजों को उन्होंने, तो फिर ठीक है, फिर तुमने भी नहीं आगे ज्यादती करनी कि नहीं हमने मारना है, हमने पिछले बदले लेने। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमातु किसास, यानी शहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुरमत वाले महीने, पहले तो ये समझे कि वो कौन सी हैं हुरमत वाले महीने। हुरमत वाले महीने, एक अलग से महीना रजब का, रजब, ठीक है। दूसरा जो ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 मंथ्स हैं जो हुरमत वाले हैं, ठीक है। हुरमत वाले महीने, इनके अंदर ये जो रजब का महीना था, इसमें ये लोग उमरा करने के लिए जाते थे, अरब में ये था, और ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम ये हज के लिए थे। तो मुशरिकी ने मक्का में भी ये कानून समझ लें था कि इन महीनों के अंदर बिल्कुल अमनो अमान किया जाता था, कोई किसी को ना लूट मार करता था, ना कत्लो गारत करता था, ना कोई जंग होती थी, कि सेफ एक पैसेज दिया जाए मुसलमानों को, नहीं लोगों को, क्योंकि ये हज उमरे पहले भी होते थे ना, कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए कि वो आए और आके हज उमरा करें। दूर दूर से लोग आते थे, उनको रास्ते में ये कोई खतरा नहीं होता था कि हमें कोई लूट लेगा, कोई मार देगा, कोई कुछ होगा, तो सेफ्टी दी जाती थी। तो इन महीनों के अंदर किसी को नहीं कुछ कहा जाता था। अब जब मुसलमान, जब मैंने आपको बताया ना 7 हिजरी में जब मुसलमान उमराए कजा करने के लिए आ रहे थे, तो उनको एतबार नहीं था ये काफिर जो हैं अब हमारे साथ हो सकता है कि कुछ करें, कोई जंग करें, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम हुरमत वाले महीने में उनके साथ जंग का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये ज़िकादा का महीना है जो शहरुल हराम में से है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो इसके जवाब में ये आयत उतरी। अब उनको पता होना चाहिए ना कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम क्या, तो फरमाया गया शहरुल हराम बिशहरिल हराम, यानी अगर वो वायलेट करें हुरमत को इन महीनों की, तो तुम भी फिर उनसे लड़ो। नहीं, वो अगर इनके तकद्दस को नहीं समझ रहे, इनका तकद्दस पामाल कर रहे हैं इन महीनों का, इन मोहतरम महीने हैं ना ये, एहतराम वाले महीने, इनकी हुरमत को ही वो नहीं कुछ जान रहे और उसको पामाल करते, तो फिर तुम भी उनसे इसमें लड़ सकते हो। वल हुरुमात क़िसास, और हुरुमात का क़िसास है, हुरुमात क्या है, ये जो भी ये वायलेशंस हो रही हैं इनका क़िसास है, जो मोहतरम चीजों में जो भी ऐसा कोई मामला किया जा रहा है, जो मोहतरम चीजें हैं, मसलन है ये महीने मोहतरम है, जो अल्लाह ताला का घर मोहतरम है, मस्जिद हराम ये मोहतरम जगह है, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसका किसास है फिर, यानी बदला लिया जाएगा फिर। फमन यातद अलैकुम फातदु अलैहि बिमिथलि मा तद अलैकुम। फिर ये याद रखना, जो कोई ज्यादती करे ना तुम पे तो तुम भी ज्यादती करो उस पर, मानिंद उसके जो ज्यादती की उसने तुम पर, जो ज्यादती करे तुम पर। तो फातदु अलैहि का मतलब क्या है, तुम ज्यादती करो उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान इन रिटर्न करेगा वो ज्यादती होगी, बल्कि लफ्ज को वैसा ही लफ्ज लाया गया, इक्वल लफ्ज इसलिए लाया गया ताकि पता चले कि बदला भी इक्वल होगा, मगर उसको ज्यादती नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ज्यादती तो वो है ना जो बुरी चीज है ना, किसी ने किसी साथ गलत किया है, ये गलत नहीं होगा फिर, ये सिर्फ बदला होगा फिर। लेकिन ए तदव क्यों आया, ए तदव इसलिए आया कि ताकि बताया जाए कि बराबर जैसी उसने की उसके माने तुमने करनी, उतनी ही तुमने करनी, उससे ज्यादा नहीं, उससे बढ़ के नहीं। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, इतनी मिसालें आपको दी है ना कि जिसने जैसी की होगी, मुजरिम को एक तो सजा देनी है और उतनी सजा देनी जितनी के उसने की, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कोई ऐसा वो आपके साथ ज्यादती करते हैं, तो अब आपने ये नहीं करना कि इन्होंने हमारे साथ उस वक्त भी ऐसा किया था, इन्होंने तो हमारे साथ वहां पे ऐसे, जब हम मक्का में थे तो ये हमारे साथ ऐसे करते थे, और उस सारियों को मिला के और फिर अपना भी ग्रज और अपना भी गुस्सा और ये सब करके फिर उनके साथ वो कर रहे हैं, नहीं। देखिए इस्लाम के अंदर ना हकूमत बढ़ाने के लिए कोई जंग नहीं की जा सकती, किसी जगह के रिसोर्सेज लेने के लिए नहीं कोई जंग की जा सकती, कोई पॉलिटिकल गलबे के लिए, सियासी गलबे के लिए नहीं जंग की जा सकती, लूट मार के लिए नहीं जंग की जा सकती, इनमें से कोई जंग फी सबीलिल्लाह नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसी ने फितना बरपा किया, जब किसी ने इनको निकाला, जब किसी ने जुल्म और जबर किया, जब किसी ने ये करा के उनको ये आजादी नहीं कि वो अल्लाह का नाम ले सके, तो फिर अब मुसलमानों को इजाजत दी जा रही है कि तुम उतना ही बदला ले लो। वो अगर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं और तुम्हें साथ जंग करते हैं तो फिर अब तुम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैंने इसकी बता दी ना कि इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा अब इसके अंदर एक और समझने की ये बात है कि देखें, जब ज्यादती का मामला आता है ना, इंसान ज्यादती करने पे तुल जाता है, तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये लोगों का स्लोगन है ना, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, निहत्ते लोगों को नहीं मारना, अमला को नहीं नुकसान देना, इसे नहीं करना, तो ये इतने सारे रूल्स हमें बताए गए ताकि ज्यादती ना हो किसी के साथ। सब फेयर नहीं है जंग में कि जो मर्जी चाहो करो, मारा किसी ने करा किसी और को, बस औरतें भी होती है ना लड़ाई शौहर से होती है, तो कहती हैं अच्छा इसने मुझे इतना सताया, बदुआएं किसको देती हैं, अल्लाह तेरी बहन की भी घर उजड़े, जैसे मेरा तू कर रहा है तेरी बहन के साथ भी उसका हस्बैंड ऐसे कर, बहन का क्या कसूर, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे है, हालांकि वो अपनी भी बेटियां होती हैं, उनके भी अल्लाह करे ऐसे आगे आ जाए। देखे जो बेकसूर होता है ना या मजलूम होता है, वो भी जो भी अपना बदला लेगा वो सिर्फ उसी से ले सकता है और उतना ही ले सकता है जितना कि उसके ऊपर जुल्म हो, इतनी इजाजत है सिर्फ, क्योंकि ये इंसाफ है, सिर्फ उतनी इजाजत है। माफ कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन इजाजत भी कितनी है, सिर्फ उतनी। लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाना, बेकसूरों को बीच बीच में घसीट रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, कि जब लड़ाइयां घरों में भी होती हैं तो आप देखेंगे कितनी ज्यादती पे हर फरीक उतर आता है, एक ने एक किया होता ना तो दूसरा कहता है जब तक मैं दो नहीं करूंगा ना इसके साथ, मैं इसने एक थप्पड़ मारा मैं जब तक दो ना मार लूं मुझे कहाँ चैन आना, उसने एक गाली दिया ना मैं 10 सुना के जाऊंगी इसको, तो नहीं। ये कानून है कि जो भी ज्यादती करे, ये सिर्फ जंग की बात नहीं हो रही, आम जिंदगी में भी जितना कोई आपके साथ करे उतना सिर्फ, अब ये भी जहन में रखना चाहिए ना। देखें एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने कहा था मेरा गुलाम है वो मेरे चोरियां करते हैं मेरे माल में से, तो फिर मैं उनको बड़ा मारता आरता हूँ ये करता हूँ, तो मेरा अल्लाह के पास क्या मामला होगा, वो फिक्र भी होती थी ना उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन ऐसे होगा कि जो वो तुम्हारे साथ ज्यादती करते थे, जो हमारा माल लूटा जो भी किया, वो एक पलड़े में होगा, और जो तुम उनको मारपीट करते थे दूसरे पलड़े में होगा। अब जो वजन ही हो गया, फिर उसको फिर पे करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ना, अगर तुम्हारी मार ज्यादा बढ़ गई उनकी चोरियों से तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, और उनकी चोरियां बढ़ गई तो उनको पे करना पड़ेगा। तो वो इतना डर गया कि उसने उनको आजाद कर दिया अपने गुलामों को। तो इसी तरह है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आप कहते हैं ठहर जा मैं बताती हूँ इसको, अब आपने उससे भी ज्यादा बढ़ के बदला ले लिया, तो जालिम कौन हो गया? पहले आप मजलूम थे जब तक वो आपको कुछ कह रहा था, अब आप जालिम बन गए जब आपने इतना बड़ा बदला लिया कि उससे भी डबल कर दिया जो उसने किया था। और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर। ओके, हम जब गुस्से में आते हैं या ज्यादती पे उतरते हैं ना, तो हम वे नहीं कर पाते कि उसने कितना किया और मुझे कितना करना। वो जो रेज अंदर से आती है ना, वो जो गुस्सा अंदर से आता है, और ये कि उसने किया क्यों ऐसे, और मेरे साथ इसने ऐसे किया, वो जो आपको उबाल आता है ना, वो उस ज्यादती पे उभार ही देता है, ज्यादती हो ही जाती है। तो इंसान को सिर्फ इजाजत उतनी है जितनी उसके साथ ज्यादती हुई है। जिंदगी में कहीं पे भी देख लें आप, किसी रिश्ते में भी देख लें आप, कहीं पे भी माफ करना, दरगुजर करना, वो आला अखलाक है, वो अंबिया का अखलाक है। लेकिन अगर किसी को बदला लेने का बहुत भी हो तो सिर्फ उतना ले सकता है, बस इससे आगे नहीं। अब आप देख लें कि फिर हम क्या करते हैं। आप ऊपर के लेवल का देखें, इतने ऊपर के लेवल पे जहां पे जंगें हो रही हैं वहां तक भी ज्यादती की इजाजत नहीं है। जहां पे काफरों के साथ जंग की जा रही हो, जहां पे एक तरफ मोमिन और वो हक पे हैं और उनको सताया गया है, उनको भी कहा गया नहीं, लेकिन ज्यादती नहीं करनी। और कहां ये कि हम घर घर में आज ज्यादतियां हो रही हैं, अपने घरों के अंदर हम जो कर रहे हैं वो, उसके ऊपर नहीं कोई पकड़ होगी। अल्लाह का कानून तो जंगों के लिए भी वही है और घरों की जंगों के लिए भी वही है, चाहे मुल्कों की हो चाहे खानदानों की हो। तो फिर आप बताइए कि फिर इसके बाद हम कहाँ खड़े होते हैं, और ज्यादतियों में हम किस हद तक बढ़ जाते हैं। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, क्योंकि तो अल्लाह को पता है ना, जब आमने सामने लड़ाई झगड़े होते हैं, मैदाने जंग हो या घर का मैदाने जंग हो, तो फिर जज्बात, फिर जुबान, फिर हाथ, ये काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वही करेगा जिसके अंदर अल्लाह का डर हो। और यही फर्क है एक मोमिन में और गैर मोमिन। मोमिन अल्लाह से डरता ही रहता है चाहे वो जंग में ही हो, जैसे मैंने आपको हज़रत अली की मिसाल बताई, वो उतना ही बदला लेता है जितना कि उससे साथ ज्यादती हो। जबकि जो गैर मोमिन होता है ना, जिसमें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, वो उसको याद ही नहीं रहता कि कोई खुदा भी है जो मुझे देख रहा है, उस वक्त नहीं उसको याद रहता, वो जुनूनी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं ना, गुस्से में भी पागल हो जाना, जंगी जुनून तारी हो गया इस पे, वो उसको जुनून कहते हैं ना। इसलिए इंसान में कोई कोई सेंस ही नहीं रहती कि वो कर क्या रहा है, क्या क्या रहा है। तो ये मोमिन नहीं होता। ऐन जंग के जर जब ज्यादती का बदला लिया जाना, उस वक्त भी कहा गया वत्तकुल्ला, सुभान अल्लाह, वालमू अन्ना अल्लाह माल मुत्तकीन, ये याद रखना अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं होगा ना, तो तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी। डरते रहना अल्लाह से, ये याद रखना अल्लाह मुझे देख रहा है, तुम्हें अल्लाह ताला की नजरों का एहसास होना चाहिए। और ये सोचना कि मैंने कोई मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं, ये है तकवा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम तो अल्लाह की हदों को क्रॉस करते जाओ फिर भी अल्लाह तुम्हारा ही साथ देता जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह जालिमों के साथ नहीं होता, चाहे हम कहें ओ हम तो मुसलमान हैं, हम तो जो मर्जी करते रहे, हम तो जितना मर्जी जुल्म कर लें, किसी ने हमारे साथ एक किया हम 10 करेंगे इसके साथ, और फिर भी अल्लाह की मदद हमारे साथ ही होनी चाहिए ना, क्योंकि हम कलमे वाले तो हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो तुम्हें कहा था कि तुमने नहीं करना उससे ज्यादा जितना तुम्हारे ऊपर ज्यादती की गई। फिर तो जालिम में और मजलूम में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो ये आसान मामला नहीं है, ये अल्लाह की कानून है, उसकी हदें हैं, इनको भी तो सोचो। ये भी तो तुमने ही माननी है, अगर तुम इनको नहीं मानोगे तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह माल मुत्तकीन है, उनके साथ है उसकी मदद, वो उनके साथ है। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत्तहलुका, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, खर्च करना, यानी जब अल्लाह ताला के दीन की बात आए, ये कॉज हो जिसमें दीन की नशरो इशाअत हो, जिसमें दीन के लिए कोई काम करने के लिए हो, चाहे उसकी नशरो इशाअत की जाए, चाहे उसके लिए लड़ना हो, चाहे उसके लिए यानी किसी तरह के भी अल्लाह ताला के दीन को जब मदद की जरूरत हो, चाहे वो कोई मस्जिद बनानी है, चाहे कोई मदरसा बनाना है, चाहे आपने कोई मटेरियल आगे लोगों को देना है जिससे अल्लाह ताला की पहचान उनको हो, दावा कोई कोई काम करना है, इसके लिए सबके लिए कोई पैसों की जरूरत ही होती है ना। तो इन्फाक करो अल्लाह के रास्ते में, और वला तुलकू भी ऐदिकु मिल तहलुका, और ना तुम डालो अपने हाथों को यानी अपने आप को, मतलब क्या है हाथों को कहने से, मतलब कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी तुम हलाक हो जाओगे अगर तुम नहीं करोगे ये इन्फाक। क्यों हलाक हो जाओगे? तुम हलाकत में डालने का मतलब ऐसे अपने आप को किसी आग के गड़े में डाल देना, किसी जगह से ऊंची जगह से नीचे फेंक देना, हमने क्या हम उसको कहेंगे इसने अपने आप को खुद हलाकत में डाल दिया, ऐसा ही है ना। तो इन्फाक ना करने से कैसे हलाकत हो जाएगी? इसलिए कि जब आप अल्लाह ताला के दीन की खातिर नहीं खर्च करेंगे, तो देखें दीन की जो दूसरे लोग हैं उनको तो दीन में बुलाना तो दूर की बात है, आपके जो अपने मुसलमान हैं उन तक भी कोई इल्म ना पहुंचेगा, ना उनको अपने दीन का कोई पता होगा, ना उनके पास कोई जगह है जहां के ऊपर वो जहां बैठ के वो अल्लाह के दीन की कोई बात कर सके, ना उनके पास कोई जगह जहां पे कोई नमाज पढ़ सके या कोई सीख सके, कुछ सिखा सके, दीन की बातों की मालूमात हासिल कर सकें, ना कोई वैसा मटेरियल है। अगर सब लोग ऐसे करने लगे और कह रहे हैं और सोचें ये कि कोई बात नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो, क्योंकि ये दीन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो जो आज हुआ है, ना दीन सीखा गया, ना सिखाया गया, ना इसके ऊपर खर्च हुआ, मदारिस की हालत इतनी बुरी, वो ऐसे रिमोट एरियाज में जहां तक कोई जा ही नहीं सकता, वो तो फिर क्या हुआ, लोग अल्लाह के दीन से नावाकिफ रह गए ना। जब दीन पे खर्च नहीं किया जाएगा, जब यूनिवर्सिटीज और ये तो इतनी मॉडर्न और इतनी बड़ी और जबरदस्त, और अल्लाह के दीन को सिखाने की जगह कैसी, जब मस्जिदों की हालत इतनी मखदूश, वहां पे फटे हुए कारपेट बिछे हुए हैं, जा नमाज़गों की हालत क्या है, छतें टपक रही हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो वो फिर बताएं क्या हाल होता, क्या हाल होगा ऐसे फिर दीन का, वो तो एक बेचारगी का दीन ही होगा ना। और अगर नहीं खर्च करेंगे तो अपने मुसलमानों का भी मुसलमान रहना मुश्किल होगा, याद रखिए। और आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम खर्च करें ताकि, और सही जगह पे खर्च करें ताकि दीन की नशरो इशाअत हो, नशरो इशाअत समझते हैं, ये दीन का काम आगे बढ़े, ताकि हम इन मुसलमानों को समझ हो। देखिए ना, अब ये ना मसलन पढ़ा पढ़ा जा रहा तो हर बार कंफ्यूजन ही रहेगी ना, पता नहीं क्या बात है, लड़ने का क्या चीज है, ये इल्म ना आगे सिखाया जाए, ना इसके लिए कोई कोई जरिया ही ना हो, तो क्या होगा फिर? दीन को भी जरूरत है कि इसके ऊपर खर्च किया जाए, और सिर्फ खर्च करना माल ही नहीं, बाज जगह के ऊपर आपका वक्त जो होता है वो खर्च करना जरूरी होता है। देखिए तीन ही चीजें हैं ना, एक जान दे देनी अल्लाह के रास्ते में, एक माल दे देना अल्लाह के रास्ते में, और एक है वक्त दे देना अल्लाह के रास्ते में, इस जिंदगी को लगा देना अल्लाह के रास्ते में, ये तीन ही चीजें आप खर्च कर सकते हैं। अब इनमें बहुत से लोग माल लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वक्त नहीं लगा सकते, वक्त देने को कोई भी तैयार नहीं, तो माल का क्या करेंगे आप? आप एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दें, वो आएगा ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा? तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह के रास्ते, वरना हलाकत में पड़ जाओगे, आगे की जनरेशन तक दीन कैसे पहुंचेगा बताएं, तो हलाकत है ना फिर, ये अपने आप को हलाकत में डाल देना है अगर नहीं खर्च किया तो। वह आहसिन और एहसान करो, यानी जो तुम स्पेंड करोगे ना ये भी बेहतरीन तरीके से स्पेंड करो, ये नहीं कि बिल्कुल रद्दी चीजें या बिल्कुल ऐसे ही कि बस सर से उतारने वाला काम, नहीं, ब्यूटिफुली। इन अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मोहसिनीन से, एहसान करने वालों से। अब आगे आ गई हज और उमरे की बात, इसको भी देख लेते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने बताया कि हज और उमरे के अंदर कोई मसाइल आ जाए तो उनको कैसे फिर सॉल्व किया जाए। सबसे पहली बात, वह अतिमुल हज वल उमरा था किसके लिए, लिल्ला, तमाम करो, यानी पूरा करो हज को और उमरे को, यानी उसके पूरे मनासिक करो, सारी चीजें उसकी कंप्लीट करो। जब एक दफा चल पड़े हो तो उसको पूरा करके ही आओगे, बात समझ आ गई। और ये सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, दूसरी भी जिंदगी की जितनी चीजें आप देखें ना, अगर आप उनको पूरा ना करें, आप एक खाना बना रही हैं, आपने पूरा ही नहीं किया, आधा गोश्त कच्चा, आधा पक्का, आधा मसाला भुना, आधा नहीं भुना, वैसे ही छोड़ के चली गई, तो वो किसी खाने के काबिल रहेगा? तो कोई भी जिंदगी का काम अगर आप उसको मुकम्मल ही नहीं, आप अपनी जॉब है वो किसी ने जॉब के लिए हायर किया, आपने वो प्रोजेक्ट ही नहीं पूरा किया, क्या मिलेगा आपको उस पर? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह मामलात इबादात के भी हैं, इसी तरह जो भी काम आप अल्लाह की खातिर करते हैं ना नेकी का, उसको भी पूरा करना जरूरी है। आप दुनिया के मामले में सोचते नहीं, कंप्लीट करना है, मैं जॉब कंप्लीट करके आऊंगी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका यही होता है ना। तो फिर क्यों नहीं दीन के मामले में हम ये सोचते हैं कि कंप्लीट करना है? अब जैसे रोजों का भी आया कि अगर कोई मरीज है और सफर पे है तो वो कंप्लीट करे अपनी इद्दत, गिनती को पूरा करो दूसरे दिनों में, यानी पूरा उसमें भी करना है, किसी वजह से रह गया था उस वक्त अगर रमजान में, बाद में आपको कंप्लीट करना है। इसके मैं इसलिए इतना जोर दे रही हूँ कि बास लोग बहुत शौक से इन कोर्सेज में आते हैं, बढ़िया जोश आया किसी दिन कोई दर्स सुन लिया, अब आ तो गए, अब किसी दिन कोई टेस्ट में मसला हो गया, टेस्ट देना मुश्किल लग रहा है, या कोई ग्रुप में जाना मुश्किल लग रहा है, या कुछ याद करना में मसला हो गया, हाय हाय ये तो हमसे नहीं होता, छोड़ छाड़ के बैठ गए। नहीं, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। जो काम भी अल्लाह की खातिर करें, देखिए हम अल्लाह की खातिर ये सीख रहे हैं ना, अब इसमें मुश्किल भी आएंगी, कोई हर्डल्स भी आएंगी, वो मसले भी आ सकते हैं, इसको छोड़ के बैठना ये सोल्यूशन नहीं है। अल्लाह ताला को वो काम पसंद है जो रेगुलरली किया जाए, मुसलसल किया जाए। और इबादात में देखा कितनी ताकीद से यहाँ पे कह दिया, अतिम्मू पूरा करो हज और उमरे को। नहीं, अल्लाह ताला इनकम्प्लीट चीजों को नहीं पसंद करता, क्या दूरी दूरी छोड़ छोड़ के जा रहे, और हम क्या एक पारा पड़ा उसके बाद छोड़ के बैठ गए जो भी फॉर वट एवर रीजन। नहीं, जब आप शुरू करें तो सोचें कि मैंने इसको मुकम्मल करना है। बाज लोग 10 काम शुरू कर लेते हैं, एक भी नहीं उनमें मुकम्मल होता, इधर भी हाथ डाला हुआ, उधर भी कोर्स लिया हुआ, इधर भी किया हुआ, कार एक भी नहीं सही से सकते, तो ऐसे का क्या फायदा मुझे बताएं, एक भी मुकम्मल ना हुआ। इससे बेहतर नहीं कि आप जो शुरू करें उसको कम अज कम पाए तक मील तक पहुंचाएं। जब हम दुनिया में नहीं ये पसंद करते कि कोई काम शुरू किया जाए और उसको कोई अधूरा छोड़ के चला जाए, आपके घर कोई सफाई वाली आई है वो आधा काम करती आधा छोड़ के चली जाती है, आपको कैसा लगता है? हम दुनिया के कामों में अपने लिए नहीं पसंद करते, और अल्लाह के लिए वो काम करते हैं जो अधूरे अधूरे हैं, जिसमें कोई भी मुकम्मल नहीं है। तो सबसे पहली बात यह कि पूरा करना, या हज के लिए निकले उसको पूरा करें, उम्रे के लिए निकले उसको कंप्लीट करें, और किसके लिए करें? लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। फा इन उसिर तुम, फिर अगर तुम घेर लिए जाओ, घेर लिए जाओ यानी क्या मतलब है कि आप, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे 6 हिजरी में उम्रे के लिए निकले थे, और आगे काफरों ने कहा कि नहीं आप इस साल नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो वापस कर दिया गया। अब अल्लाह का तो हुक्म है ना कि पूरा करना है आपने, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, मसलन आज के हालात में एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है कि नहीं इस वक्त आपको वहां पे पाबंदी लगा दी गई है, आप नहीं जा सकते, एंटर नहीं हो सकते उम्रे हज के लिए, हालांकि आपके पास वीजा भी अभी है, पासपोर्ट भी है, टिकट भी है, सब है, लेकिन अथॉरिटीज ने आपको नहीं जाने दिया, एयरपोर्ट से वापस कर दिया, अब आपने एहराम भी बांधा हुआ है, आपने नियत भी कर ली हुई है, तो अब क्या करें? फिर तो कुछ होना चाहिए ना यार, अल्लाह ना करें कहीं जा रहे थे फिर एहराम भी बांध लिया था, नियत कर ली थी, तो अब इसका मतलब है कि आप निकल पड़े उस सफर पे, तो अब क्या है? अब आप ऐसे कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप पहुंच ही नहीं सके वहां पे, या वहां पहुंचे तो ऐसे बीमार पड़ गए कि आप जा ही नहीं सके अरफात तक, या आप उमरा ही नहीं कर सके, या हज नहीं कर सके, तो फिर क्या करो? फमस्तई सरा मिनल हदी, तो जो भी मुयसर आए कुर्बानी कर, कुर्बानी कर दो। तो ये यानी जो भी बंदा ऐसे किसी वजह से रोक दिया जाए, वो निकला था हज के, उससे उसने आराम पहन लिया था, तो अब रोक दिया गया, तो अब कुर्बानी करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप वो आराम से घर आ जाएंगे। वला तहलिकु रुउसकुम हत्ता यबलु अल हदीयु महिल्ला, और ना तुम मुंडाओ अपने सरों को यहां तक कि पहुंच जाए कुर्बानी अपनी हलालगाह को, यानी अब आपने जो कुर्बानी दी है वो अब क्या करेंगे? अब आपने जब तक कुर्बानी अपनी हलालगाह तक ना पहुंच जाए, यानी अगर हज है तो वो मीना में पहुंच जाए और वहां पे कुर्बानी हो जाए, किसी को आप कह दें कि वहां पे कुर्बानी कर दे आपकी तरफ से, या उम्रा है तो आपने कुर्बानी वहां पे भेज दी, जब तक वो अपनी जगह पे ना पहुंच जाए, वहां पे कुर्बानी ना हो जाए, उस वक्त तक सर ना मुटाओ, ये कहा गया। यानी एहराम से निकलने के लिए ये है, ये एहराम से निकलने के, ऐसे ही नहीं एहराम से की पाबंदियों से निकल सकते, क्योंकि एहराम बांध लिया ना एक दफा, तो अब या तो पूरा करें, अब हो गई बीच में कोई ऐसी इमरजेंसी, इंसान के कंट्रोल में ही नहीं है, अब वो इरादे से तो गए थे, अब आज के हालात में देखिए इरादे से निकले, एयरपोर्ट से उनको वापस कर दिए, बेचारे वो क्या करें। तो अब ऐसे ही नहीं वो एहराम, अगर उन्होंने एहराम बांध लिया, अगर तो वहां तक मीकात तक पहुंचे ही नहीं, एहराम ही नहीं बांधा, या अभी नियत ही नहीं की थी तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने एहराम में आ गए हैं, नियत कर ली है, तो अब वो वेट करेंगे जब तक के वहां पे कुर्बानी ना पहुंच जाए, फिर वो अपना सर मुंडा ले मर्द जो है। तो इससे पता चलता है ऐसे ही नहीं है हालत एहराम से निकला जा सकता। अब वो पता है ना, आदमियों के लिए तो एहराम के कपड़े भी होते हैं, लेकिन हालत एहराम एक अलग चीज है, एहराम सिर्फ कपड़े नहीं है, हालत एहराम मतलब है औरतों ने चाहे कोई खास लिबास नहीं भी पहना हुआ, लेकिन उनके ऊपर भी पाबंदियां तो है ना वो एहराम की, तो वो उन पाबंदियों को, उन रिस्ट्रिक्शन से निकल नहीं सकती जब तक ये नहीं करें। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम में रासी ही, तो जो कोई तुम में से मरीज हो, यानी किसी को पहले बाल काटने पड़ जाए, अभी हदी महिला तक पहुंची ही नहीं है, या वो मरीज हो, उसको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी अजियत लाहक हो जाए किसी को, जिसकी वजह से उसको अपने सर मुंडाना पड़े, अब अजियत के अंदर किसी को जुएं पड़ सकती हैं, उसको सर मुंडाना पड़ा, या कोई ऐसा किसी का सर में मसलन कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने सर के अंदर कोई स्टिचेस लगाने हैं, वो बाल वहां से उतारते हैं स्टिचेस लगाने के लिए, तो फिर वो क्या करे, फिदिया तुम मिन सुयामिन और सदकतिन और नुसुक, तो फिर तीन में से एक ऑप्शन है उसके पास, फिर या तो रोजे रखे, रोजे कितने रखे, तीन रोजे, ये हदीस से पता चलता है, या फिर सदका कर दे, कितना सदका करे, अपनी मर्जी से नहीं, हदीस से पता चलता है, 6 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या फिर एक कुर्बानी कर दे अल्लाह के रास्ते में, एक बकरी दे दे बस। तो इससे पता चलता है कि अपनी मर्जी से नहीं जाके आपको भी आराम पहन लें, कभी आराम से निकल आए, कभी कुछ कर लें, अपनी मर्जी से नहीं ये चीजें कर सकते। फाइदा अमीन तुम, फिर जब अमन में आ जाओ, यानी अब रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है, अब जो रुकावटें थी अब उन्होंने खोल दिया है हज उमरे वालों के लिए रास्ता, अब कोई रुकावट नहीं, या इंसान अगर बीमार हो गया था तो अब वो तंदुरुस्त हो गया है, या जो भी उसकी रुकावट थी जिसकी वजह से वो पहले नहीं जा सका था, तो अब हालात ठीक हो गए हैं, तो अब फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो कोई फायदा उठाए उम्रे का हज में, यानी हज तक जो कोई उम्रा करे, एक्चुअली इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जाहिलियत के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब कोई लोग हज के लिए जाते थे ना तो उम्रा नहीं करते थे, उमरा करने को वो हराम समझते थे, नाजायज समझते थे, कहते थे हज करने जा रहे हैं और उमरा भी करके अपना फायदा उठा रहे हैं कि हम इसी के अंदर उमरा कर रहे हैं, उमरे के लिए आपको अलग जाना चाहिए, ये नहीं कि आप हज के अंदर ही उमरा कर लो तो फिर क्यों उमरे की वैल्यू रह जाएगी, आपने तो उसका पार्ट ही बना दिया। तो अल्लाह ताला ने बाद में इस चीज को खत्म कर दिया, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बड़ी सहूलत कर दी कि अब जो कोई वहां का रहने वाला है ना, जो जो कोई यानी मक्का का रहने वाला है, वो तो सिर्फ हज ही करे, जिसको कहते हैं हज इफराद, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हज इफराद, यानी वो सिर्फ हज करे, वो उमरा कभी बाद में और करे, हज के साथ ना करे, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं, उन जैसे हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक दफा कभी जिंदगी में जाना हो, या बार बार मौका नहीं मिलता हो, या इतना महंगा हज उमरा हो, या पहले जमाने में इतना मुशक्कत थी, लोग महीनों का सफर कर करके वहां पहुंचते थे और उनको पता नहीं होता था जिंदा वापस आना है या नहीं, आए तो आए वरना नहीं, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं होती थी, कौन से कोई फोन थे या कुछ थे, तो लोग चले जाते थे, फिर जब आते थे इसलिए तो इतनी खुशी मनाई जाती थी कि वो हज से आ गए, वो बहुत बड़ी बात होती थी हज करना। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत दे दी कि जब दूर से आते हैं उनके लिए मुश्किल है, तो वो उमरा भी साथ कर ले, उम्रे का भी फायदा उठा ले हज के साथ, तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सहूलत दी ना। अब बेचारे कई लोग कितनी मुश्किलों से पैसे जोड़ जोड़ के फिर हज के लिए आते हैं, उनके लिए कहाँ पॉसिबल है कि बार बार उम्रे के लिए जाए, तो उनके लिए भी कितना सहूलत हो गई, यानी आज के वक्त में अगर सहूलियात हैं सफर की, लेकिन इतना महंगा है हर कोई नहीं जा सकता, तो वो हज के साथ ही उमरा कर ले, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो फायदा उठाए ना उमरे का हज तक, यानी जिसमें आप देखें हज तमत्तो में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं, हज कुरान में भी आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं। हम सब जो है जितने भी सुनने वाले हैं वो सब यही दो करते हैं हज, क्योंकि हमें कोई भी मक्का के अंदर अनलेस आप रहने वाला हो तो फिर वो सिर्फ हज करेगा। तो फमस्त ही सारा मिनल हदी, तो अब अल्लाह ताला ने ये जो तुम्हें फायदा दे दिया ना कि तुम उमरा भी कर सकते हो हज के साथ, अल्लाह ने तुम्हें ये एक सहूलत दे दी ना, इसके शुक्र के तौर पे अब तुम क्या करो, जो भी कुर्बानी तुमसे मुयसर आए तो करो। इसी वजह से हज इफराद वाले कुर्बानी नहीं वहां पे करते, हज तमत्तो और हज किरान वाले करते हैं। तो ये वहां पे एक हम शुक्राना शो करते हैं कि अल्लाह ताला कि तूने हमें उमरे की भी तौफीक दे दी इसके साथ। फमल्लम यजिद, तो जो नहीं कुर्बानी कर सके, नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, मुश्किलों से तो हज पे पहुंचा है, वो कहाँ कुर्बानी करेगा, तो उसके लिए ऑप्शन है फसयामु सलासती अय्यामिन फिल हज, तो ऐसा करे वो कि 3 रोजे हज के दिनों में रख ले। हज के दिन कौन से, फर्स्ट जिलहज से लेके 9th तक के दरमियान 3 रोजे रखते। वह 7 दिन इदा रजा तुम, और 7 रोजे जब हज खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद, चाहे वो वहीं पे रह रहा है तो तब रख ले, चाहे घर आ गया तो तब रख ले, मगर हज के दिन जो ये आमे तशरीक है वो खत्म हो जाए 13 तारीख के बाद, वो किसी वक्त भी कर रख ले। तिल का आशरतुन कामिला, ये टोटल कितने हो गए, 10 रोजे हो गए। ये उसके लिए, देखिए हर एक के लिए अल्लाह ने सहूलत दी है। जो ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें कुर्बान, मतलब कुछ लोग देखें जैसे मैंने आपको बताया कि मुश्किलों से हज के लिए सफर करके जाते हैं, अब वो उनसे कहते हैं आप कुर्बानी के भी पैसे दें, हो सकता है किसी के पास नहीं हो, तो ये ऑप्शन तो किसी को पता ही नहीं होती आज कि अगर मेरे पास नहीं है कुर्बानी के पैसे तो ठीक है कोई बात नहीं, कुर्बानी ना करें, फिर वो इस तरह 10 रोजे रख लें। दालिका, ये उसके लिए, लिमन लम यकुन अहलु हादरिल मस्जिद हराम, ये उसके लिए जो मस्जिद हराम के रहने वाले नहीं है, जिसके घर वाले मौजूद नहीं है मस्जिद हराम में। क्या मतलब है इसका, मतलब वो रेजिडेंट नहीं है वहां का, यानी वहां का रहने वाला नहीं है, वो उसकी फैमिली वहां पे नहीं है, वो मुकीम नहीं है, वो ये कर सकता है कि उम्रे को हज के साथ मिला के कर ले। बात समझ आ रही होगी उम्मीद है, इजी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप हमने क्या बात की कि सब जो आउटसाइडर्स हैं, जो हरम से बाहर के लोग हैं, नॉन रेजिडेंट है वहां के, वो उम्रा और हज साथ कर सकते हैं, जैसे हम सब करते हैं जब जाते हैं, तो हम पहले उम्रा करते हैं फिर उसके बाद हज करते हैं, और वो फिर कुर्बानी करें वहां पे। जो नहीं कुर्बानी कर सकता वो 10 रोजे रख ले, 3 पहले और 7 बाद में। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से, लेकिन फिर आ गई बात वत्तकुल्ला, इसलिए कि बाज दफा इंसान ना सिर्फ इन रिचुअल्स में पड़ जाता है, ये करना है, रमी करनी है, कुर्बानी करनी है, सर मुंडाना, ये याद नहीं रहता क्यों कर रहे हो, ये कोई रस्में थोड़ी हैं जो तुमने सिर्फ निभानी है और बस हो गया, नहीं सोचो कि हम यहाँ पे क्यों आए, सोचो कि हमारे यहाँ पे से क्या लेकर जा रहे हैं, किस हालत में आए थे और किस तरह हमने जाना है यहाँ से, इन सारे अरकान के पीछे अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहा है, सब चीजें हैं। आलमो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा भी देने वाला है, यानी अगर अल्लाह की हदों को तोड़ोगे ना, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो इनको लाइटली ना लो कि हमें कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी करूं, ये नहीं होगा। याद रखना फिर अल्लाह सजा भी सख्त देने वाला, और हमें ये समझना चाहिए कि जब हम हज उमरे के लिए जाएं तो हमें ये अहकामात पता हो, ना कि हम अपनी मर्जियां करते रहे। अलहजु अशहुरु मालूमात, हज के जो है ना महीने वो मालूम है, इसका मतलब हज के भी कोई महीने, आपको पता है उम्रे का तो कोई महीना नहीं, आप कभी भी साल भर में जाए उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज के स्पेसिफिक महीने हैं, आप उसके अलावा अपनी मर्जी अपनी कन्वीनियंस से जाके हज नहीं कर सकते। और हज के महीने कौन से हैं पता है आपको, शव्वाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा, ये 3 महीने हैं, ज़िलहज्जा के भी 10 दिन पहले के, तो ये 2 महीने और 10 दिन हैं जो हज के महीने। अब इनके अंदर क्या मतलब है कि हज के महीने, मतलब ये है कि फर्स्ट शव्वाल को अगर कोई एहराम बांध के चल पड़ता है ना, मीकात पे एहराम बांध लिया, उसने नियत कर ली तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रमजान की 29 तारीख को या रमजान में ही चल पड़े वो हज करने के लिए, और रमजान में ही उसने एहराम बांध लिया, नियत कर लिया, तो उसका हज नहीं होगा। हज सिर्फ अगर ये फर्स्ट शव्वाल से आगे, फर्स्ट शव्वाल से शुरू होते हैं ये टाइम, सिर्फ इसके अंदर वो, यानी शव्वाल है, ज़ीक़ादा है, ज़िलहज्जा के शुरू के दिन है, इनमें सिर्फ वो अगर एहराम बांधता है और नियत करता है हज की, तो तब उसका हज होता है। बात समझ आई। फमन फरद फीहन अल हज, तो जो कोई फर्ज करे इनमें हज को, क्या मतलब है इसका फर्ज करे, यानी जिसने अपने ऊपर फर्ज कर लिया, फर्ज अपने ऊपर कैसे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है कि जब इंसान, जैसे यहाँ पे कहा गया ना, वतिमुल हज्जा वल उमरा तलिल्ला, जब इंसान मीकात पे आए और वो एहराम बांध लेता है, वो नियत कर लेता है ना हज की या उमरे की, तो यहाँ पे तो हज की बात आ रही है, जो हज की जिसने नियत कर ली तो उसने अपने पर फर्ज कर लिया अब हज, अब उसको लाजमी हज करना है, उसको पूरा करना है हज, ऐसे नहीं जा सकता वो। बात समझ आई कि अब मेरा मूड बदल गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बात कह रहे कि अब तो मैं जा रहा हूं या अब नहीं मैंने करना, नहीं अब उसके ऊपर फर्ज हो गया हज, तो अब उसके लिए ना तीन पाबंदियां लगाएंगी। आपको पता है ना एहराम की पाबंदियां, तो आपको पता होंगी, खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने हैं, ये नाखून नहीं काटने हैं, इस तरह की कई पाबंदियां एहराम की। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक तीन पाबंदियों का जिक्र किया गया कि हज में याद रखना ये। आपको पता है हज का जो एहराम होता है ना, वो तो जरा लंबा होता है, उमरे का एहराम तो थोड़ी देर में, चंद घंटे में उमरा हो जाता है, तो वो तो आप मतलब एहराम की हालत से बाहर आ जाते हैं, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन हज की ज्यादा लंबी होती है, कई दिनों की बात होती है। अब उसके अंदर तीन काम नहीं करने हैं जो कान खोल के सुन लें, क्योंकि हज पे जाने वालों को ये पता ही नहीं होता। नंबर वन, फला रफथा, कोई भी ऐसी मियां बीवी की जो शहवत की बात होती है, मियां बीवी नहीं कर सकते तो किसी और के साथ तो दूर की बात है ना, वो तो बिल्कुल भूल ही जाए। मियां बीवी जहां पे जायज है, वो फिजिकल रिलेशनशिप करना तो दूर की बात, वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसी हिंट देना आदमी औरत का एक दूसरे को जो इससे मुतल्लिक हो सेक्सुअल बात से, वो भी ममनू है, नहीं करना। समझ आ गई बात ये, कि कोई ऐसी बात नहीं, क्यों ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई, ताकि इंसान का ध्यान अल्लाह की तरफ रहे, ना कि इन चीजों में पड़ा रहे। ठीक है, तो फला रफसा ये तो इजी बात हो गई, वला फुसूका, और ना ही कोई गुनाह का काम, कोई गुनाह का काम नहीं कर सकते। गुनाह का काम आप कैसे होगा, अब गुनाह के काम में ये देखे ना, अब आप मीना में, आपके पास बहुत दिन है मीना में, टेंट में बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा करने का काम भी नहीं है, कोई बहुत नमाजें भी नहीं है, कोई बहुत कुछ, कहीं जाना भी नहीं, आना भी नहीं, अब बैठे हुए क्या, वो रमी करनी थी वो करके आ गए, अब 11 12 13 10 से बैठे हुए, 10 11 12 13 आप वहीं पे हैं, अब इन 4 दिनों में कुछ और तो मशगला है नहीं, तो अब क्या होता है, औरतें आपस में बातें शुरू करती थी, फिर इधर की बातें, उधर की बातें, फिर उसकी गीबतें, उसकी चुगलियां, उसकी ये, कभी कुछ बात कभी कुछ, तो ये चीजें वहां पे अलाउड नहीं है, या फिर तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो हमारा एक ट्रेनिंग कैंप है जहां पे भेजा हुआ है, वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं करनी थी, और वहां पे जाके ये शुरू कर दिया। तो कोई फुसूक की बात नहीं करनी, कोई गुनाह की बात नहीं करनी, ये सब गुनाह की बातें ही है। इसी तरह झूठ हो गया, इसी तरह अब अपने फोन्स के ऊपर लोग लगे हुए हैं, तो फोन पे कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ गुनाह की चीज देख रहा है, कुछ बात कर रहा है किसी से जिसमें कोई झूठ है, जिसमें अब व्हाट्सएप वहां पे भी चल रहा है, वहां पे भी सारी दुनिया के साथ राबते के अंदर है, अब क्या करें, वक्त तो काटना है ना किसी तरह। जब अल्लाह के जिक्र की आदत घर में नहीं होती ना इतनी करने की, तो वहां पे भी जाके कोई हम फरिश्ते नहीं बन जाते, वहां पे जाके कोई हमें ऐसा नहीं हो जाता कि हम एकदम बहुत नेक बन गए अब मीना में आते, अब वो आते कहाँ जाती हैं, अब वो जो एडिक्शन फोन की है वो वहां पे भी नहीं जाती, वहां पे भी फोन निकाली है, वही काम वहां पे शुरू कर दी, जैसे यहाँ पे देखते थे, जैसे यहाँ पे चिट चैटती है वैसे वहां पे भी कर रहे हैं। तो वो ये वक्त है कि जिस वक्त इंसान को ये समझना है कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पे, इसीलिए तो बार बार तकवा का आगे ना आगे भी आएगा, मैं क्यों आई हूं यहाँ पे, मुझे ये समझना है मैं किस पर्पज के लिए आई हूं यहाँ पे, ये काम नहीं मैं कर सकती, तो पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ लगाना है। फिर वहां पे इतनी मिक्सिंग होती है मर्दों की औरतों की, जितनी कि आप यहाँ पे कभी भी उस तरह से मिक्सअप नहीं होते आदमियों के साथ, आदमी सामने से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मर्दों की नजरों अगर औरत पे पड़ गई है तो वो अपनी नजर हटा ले, तो कोई किसी किस्म का फुसूक ना हो, बाज दफा इन अवॉइडेबल हो जाता है मर्दों से, साथ साथ वो चल रहे होते हैं साथ साथ, तो उस वक्त भी जो चीजें इन अवॉइडेबल हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके। फिर और क्या नहीं करना, जिदाल नहीं करना, जिदाल झगड़े, अब झगड़े तो बहुत होते हैं, झगड़े कैसे होते हैं, बहसें हो रही हैं, कभी तो फिक्ही बहसें शुरू होती हैं कि हमारे तो वो कैसे कहते हैं, हमारे तो इमाम ने हमें ये कहा है, हमने तो जमा नहीं करके पढ़नी नमाजें, हमने तो ऐसे नहीं करना, कभी बाथरूमों में झगड़े हो रहे होते हैं, अब तुमने पानी क्यों यहाँ पे फेंक दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, कभी कुछ हो रहा, तो तरह तरह के झगड़े, तरह तरह की बातें, गुस्से हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये इतनी जगह किसी ने किसी की ले ली तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इस तरह का कोई काम भी नहीं किया जा सकता वहां पे। इसलिए ये तीन चीजों को तो पल्ले बांध ले, अगर एहराम की हालत में इस तरह के कोई काम हो जाता है, मसलन है कि किसी से रफस हो गया, तो अब उसका तो गुनाह तो उसके ऊपर है ही है, जो अल्लाह ताला की हद को उसने तोड़ा है, फिर इबादत का सवाब भी खत्म हो गया, फिर उसको ये दोबारा हज रिपीट करना पड़ेगा, उसको फिदिया भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मामूली बातें नहीं है। इसीलिए तो है ना कि हम शऊरी हज किया करें, वो हज नहीं कि बस अब हमारे पास पैसे आ गए तो हज को जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि बस हज तो करना ही है ना, तो हज भी एक रसम ही रह गई है, तो हज हो गया बस हमारा, सर से उतारने वाली एक चीज, वो नहीं होना चाहिए, समझ के जाना चाहिए कि हज क्या है। वमा तफअलू मिन खैर यालमुल्लाह, और जो भी तुम नेकी करोगे ना, लेकिन जो चीजें ममनू है ना उनका तो बता दिया गया कि ये तीन चीजें ममनू है, तो फिर अब इंसान कहता है फिर करें क्या, कुछ भी नेकी करो अल्लाह उसको जानता है, नेकी के तो वहां पे बहुत मौके होते हैं, आप अल्लाह का जिक्र करें, आपके पास कितनी फरागत होती है, आप कुरान को पढ़ें, आपको दूसरों को कुछ सिखा दें, नहीं तो किसी से सीख लें, नहीं तो किसी की हेल्प कर दें, बहुत लोग हेल्प कर चाहते हैं वहां पे, नहीं तो कोई बीमार है उसकी कोई तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ कर दें, नहीं तो किसी को आप वैसे ही किसी को दिल अच्छा कर दें, उसको कुछ चाय पिला दें, उसको कोई खिदमत कर दें, कोई और पानी ला के दे दें, किसी कोई भी हेल्प कर सकते हैं आप, तो दूसरों की वहां पे हेल्प भी की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ, कोई अच्छी बातें सिखाई जा सकती हैं, कोई इल्म की बात की जा सकती है, कोई और अपने ऊपर कोई मुहासबा अपना किया जा सकता है, घरों में बहुत काम होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, वहां पे भी जाके कोई खैर का ही काम ना करें कि बस सोए रहें या फिर फुसूक और जिदाल में पड़े रहें, तो फिर वहां जाके भी क्या किया। तो कहा गया यालमुल्ला, खैर का जो भी काम करोगे ना, चाहे हज में चाहे यहाँ पे, हमें ये बहुत फिक्र होती है लोगों को पता चले चला के नहीं, इवन हम किसी को कोई अच्छा मशवरा दे दें, मिसाल के तौर पे अच्छा मशवरा आपने किसी को दिया, उसने वो कोई काम कर लिया, अब लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, अब आपको ये हुआ कि हाय लोगों को ये तो पता नहीं चला कि ये इसका आइडिया तो मैंने ही दिया था ना, कैसे पता चले लोगों को, अब आप सारों को बताते जाते हैं, देखो आइडिया वैसे ये मेरा था, मैंने ही इसको कहा था करने को, क्योंकि आपको ये हो रही है कि अभी इसको तो तारीफ हो गई, अब मेरा क्या बनेगा, मेरा तो किसी ने भी नहीं तारीफ की, मेरा तो किसी को पता ही नहीं चला, तो तुमने जो भी किया है या अल्लाह, कभी हम ये भी सोचा करें जब कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं ना, तो किसी को भी नहीं पता चल रहा ना, अल्लाह तू देख रहा है ना कि मैं ये कर रही हूँ, अल्लाह से बात किया करें, उसको बताया करें, अल्लाह तूने देख लिया ना मैंने ये कर लिया, कितनी खुशी होगी फिर, और वो नेकी सेव हो जाती है, वरना नेकी जाया हो सकती है, तो ये जो शौक है ना दिखाने का कि हाय इनको तो पता ही नहीं चला कि ये खाना मैं लेके आई थी, सबने खा भी लिया, लो अब कैसे पता चलेगा उनको, हम किस तरह बताएं, ये चीज मैंने बनाई थी किसी ने पूछा ही नहीं, अब कैसे इनको पता चले, इनको तो इन्होंने समझा कि सारा दूसरे ने किसी ने बनाया, ये तो मैंने बनाया था, अब कैसे बताऊं, अभी इतनी छोटी छोटी चीजों में भी ना हमें इतनी ये हो जाती है कि हाय मेरा नहीं पता चला किसी को, ये जो शौक है ना इसको हमने खत्म करना है कि मेरा क्यों नहीं पता चला किसी, बस कहीं अल्लाह को पता चल गया ना, वत्तकूनी, अच्छा नहीं अभी पीछे का रहता है, वत्तज़व्वदु फइन्ना खैरज़्ज़ाद तक्वा, ये मैं बात कहना चाह रही थी कि ठीक है वहां चले तो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वहां पे तकवा भी तो लेके जाना है, सारा सामान रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ज्यादा फिक्र ये भी होगी कि वैसलीन भी रख ली कि नहीं, सेफ्टी पिन रखी कि नहीं, हिजाब में लगाने के लिए ये वाला हिजाब रखूं कि वो रखूं, कि वो सॉक्स रखूं कि ऐसी रखूं, जूते कौन से पहनने हैं मैंने, ये सब चीजों का इंतजाम है, लेकिन ये नहीं सोचते कि सबसे बेस्ट चीज जो ज्यादा राह है जो ले जाने का सामान है, जो वहां पे चीज की, जिस सामान की सबसे ज्यादा जरूरत है वो तकवा है, उसकी तरफ ध्यान भी दो, वो भी तो लेकर जाओ कि अल्लाह का डर, ये चीज, ये शौक कि मैं नेकी करूं, ये भी तो लेके जानी है, ये भी खौफ कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कोई फुसूक, जिदाल, रफस, इनमें से ना कुछ हो जाए मेरे साथ। और जिदाल अक्सर जो है ना, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, अच्छी तो नहीं मतलब सही बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे भी ना मियां बीवी की लड़ाई हो तो वहां जाके जरूर हो जाती है। अब गए हुए वहां पे मेरे ख्याल फरागत ज्यादा होती है, तो जब एक कमरे में भी होंगे तो तब भी मसला है। तो वो कह रही कि वो एहराम, एक तो एहराम में वैसे ही नहीं झगड़ा कर सकते, अब हज के दिन है तो वहां पे कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, रमी करने जा रहे थे कहीं, वहां जा रहे थे तो लड़ाई हो गई, तो लड़ाई तो किसी से भी नहीं करनी वहां। तो फिर इसका मतलब कितना जुबान को कंट्रोल करके जाना चाहिए, समझ लें, जब एहराम पहन ले, नियत कर ले, तो जुबान को लॉक लगा ले, अब जुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, इसके अलावा ना कुछ करें, वरना सारा हज का सवाब खराब हो जाएगा, हज मबरूर नहीं रहेगा फिर, जिसमें सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते। फिर वो हज तो ठीक है आपका हो गया, एक फर्ज अदा हो गया, लेकिन हज मबरूर वाला जो अजर अगर लेना चाहते हैं ना, तो फिर इन चीजों से बचना पड़ेगा। तो अब जिन्होंने पिछला कर लिया, अब उनको क्या करें, मेरे तो अब इस्तगफार ही करें और क्या करें, तो दुआ करें अल्लाह ताला दोबारा बुलाए, तो फिर जरा ये आयतें पढ़ ली हैं तो अब जरा बेहतर वाला हज करेंगे। तो पहले जमाने में ना लोग ऐसे ही चला जाया करते थे, वो कहते थे कि हज पे जा रहे हैं तो कोई नहीं, वहां पे बस जैसे वो कहते ना, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा हमने कर लिया, कुछ हो ही जाएगा वहां जाके, बस चल पड़ो। तो फिर वहां पे गए तो अब जाहिर है खाना पीना भी तो है, अल्लाह के भरोसे को तो खा तो नहीं ना सकते, अब खाएं भी भी पिएंगे भी, कहीं रहना भी है, कुछ तो होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, वह तजव्वदु, ज्यादे राह लेके जाओ, ये नहीं कि बस अल्लाह पे हमारा भरोसा है ना, फिर वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देना, लोगों से मांग रहे हैं ये को मुझे ये दे दे, कोई खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, नहीं ये नहीं, अपना खुद इंतजाम करके जाओ। खाना पीने का पहले जमाने में तो साथ लेके जाया करते थे, तो अब आज के वक्त में खाना पीना तो साथ नहीं लेके जाते, लेकिन जो भी रास्ते का सामान है वो लेकर जाओ, ताकि तुम्हें वहां पे ना किसी और के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई ये नेकी के मुनाफी हो, हम क्यों सामान लेके जाए, हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, वो खुद ही हमें खिला पिला देगा, नहीं तुम लेके जाओ अपने जो भी पैसे हैं, जो भी वहां का खर्चा है वो आप करें, अगर किसी के पास खर्च ही नहीं है वहां पे करने के लिए, तो वो उसके ऊपर तो हज फर्ज ही नहीं होता। इसलिए कि हज फर्ज ही तब होता है जब ज्यादा राह भी हो, इंसान की सेहत भी हो, ज्यादा राह भी हो, तो सबसे बेहतरीन ज्यादा राह फिर तकवा। अच्छा एक बात और पीछे रह गई, ये इसी से ज्यादा राह की बात जहां पे आई तो याद आ गई मुझे कि वमा तफालु मिन खैरिन यालमहुल्ला, इसमें ये भी है कि वहां पे सदका व खैरात करना, आप जो भी सदका व खैरात कर सकती हैं वहां पे करें, और हर इबादत का वहां पे देखिए ना अजर कितना बढ़ जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सदका व खैरात का भी अजर वहां पे बढ़ा दे, तो अगर आप वहां पे जाके वहां के जो गुरबा मसाकीन को दे सके, खास तौर पे जो वहां पे लोग काम करने वाले हैं लेकिन उनकी बहुत थोड़ी पेज होती है, तो उनको दे दें, सफाई करने वाले हैं जो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कोई और लोग हैं, तो उनको दे, कितनी सारी खैर वहां पे तो वो हो सकती है ना सदका और खैरात के अलावा। वैसे भी आप एहराम की हालत में, वैसे ही एक इबादत की हालत में, आप वैसे ही एक अल्लाह के रास्ते में सफर में, और फिर ऑन टॉप ऑफ इट आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हाजियों की खिदमतें भी कर रहे हैं, हाजी की खिदमत करना कितना बड़ा ऑनर है, तो आप सिर्फ लोगों की खिदमत नहीं कर रहे, याद रखें वहां पे तो हाजी की खिदमत हो रही है, तो हज वाले की खिदमत तो इतना बड़ा ऑनर था कि जो कुरैश को मिला था, उसको अब अपने बहुत बड़ी अपने लिए समझते थे सआदत। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, ए अकल वालो तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा ही होगा तो ये सारी इबादात में जान होगी, अगर तकवा नहीं होगा तो बेरूह होंगी, बस गए भी, रमी भी की, जमरात रमी, कुर्बानी भी हो रही है, सर भी मुड़ाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, तो क्या पाया फिर। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फदलम मिन रब्बिकुम, अब एक और चीज बता दी गई जो जायज है हज में, ठीक है, पहले हमें क्या बताया गया कि वो चीजें नहीं करनी जो तीन थी, अब कोई लोग ये सोच सकते हैं कि वहां पे अगर हम जाएं और हम तिजारत करें, मतलब कोई सामान हम ले जाते हैं वहां पे हम बेचते हैं, तो क्या ये जायज है? जबकि हम तो हज पे जा रहे हैं, तो सही होगा या नहीं? या वहां पे जाके कोई बंदा जाए और वहां पे कुछ मेहनत मजदूरी भी कर ले, साथ हज भी उसने कर लिया, लेकिन कोई काम भी कर लेता है थोड़ा छोटा मोटा, उससे कुछ को कुछ पैसे बन जाते हैं, तो क्या सही है या नहीं? या कोई डॉक्टर जाता है वहां पे, कोई मरीज चेक कर लेता है, उसको उसकी फीस मिल जाती है, तो सही है या नहीं? तो लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई तुम पे इसमें गुनाह नहीं है, अन तब वो फजलम में रब्बी हूं, कि तुम तलाश करो फजल को अपने रब की, अल्लाह का फजल तलाश करो तुम, ये अल्लाह का फजल है। किसको कहा गया अल्लाह का फजल? रोजी को। ये कोई तुम रोजी तलाश करते हो ना, कोई तुम पैसे वहां पे कमाते हो, कोई तुम चीज वहां पे तिजारत की बेचते हो, खरीदते हो, कुछ इस तरह का करते हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। मतलब ना किसी ने वहां से कुछ चीजें खरीद ली के यहाँ लाके बेचेगा, तो क्या ये गुनाह है? क्योंकि हम तो सफर पे गए हैं वहां पे हज के, तो अब इस किस्म की बिजनेस ट्रांजेक्शन करना ठीक है क्या? तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर तुम इसमें भी तलाश करो। अब यहाँ पे रिस्क नहीं कहा गया, फजल कहा गया। फजल क्या चीज होती है? जो इंसान डिजर्व नहीं करता, उसका हक नहीं होता, लेकिन उसको दी जाती है। यानी तुम ये ना समझो कि ये मेरा हक है तो मुझे मिली है, मैंने चूंकि इतनी मेहनत की, मैं इतनी काबिल हूं, मैं इतनी लर्नेड हूं, मुझे ये हुनर आता है इसलिए मुझे मिली है। नहीं, जो रिस्क भी इंसान को मिलता है वो सरासर अल्लाह का फजल होता है, उसकी इनायत होती है। ठीक है, फाइदा अफत तुम मिन अराफात फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम। फिर जब तुम पलटो अराफात से, तो अल्लाह का जिक्र करो मशारे हराम के पास। यानी आप जो आप में से हज पे पहले गए हैं उनको तो ये बात समझ आएगी, जो नहीं गए हुए वो सुन के समझने की कोशिश करें, शायद उनको इतनी ना समझ आए, फिर इंशाल्लाह जब जाएंगे तो अल्लाह ताला लेके जाए सबको। कि जब तुम पलटो अराफात से, आपको पता है कि पहले हम मीना जाते हैं 8 तारीख को, फिर उसके बाद 9 को अराफात जाते हैं, फिर उसके बाद अराफात से शाम को जब मगरिब हो जाती है, तो बगैर मगरिब पड़े हुए हम मुजदलिफा की तरफ जाते हैं। मुजदलिफा एक वादी है, वैली है, ठीक है, वहां पे एक पहाड़ है, उसका नाम है मशरे हराम। तो बेसिकली मशरे हराम कह के मुजदलिफा ही मुराद है, कि यानी आप फिर जब पलटो अराफात से, यानी आपने अराफात में मगरिब की अजान हो गई है, अब निकलती हैं बसों में भी लोग, पैदल भी सब जा रहे हैं, फिर उस वक्त जब आप निकलते हैं तो फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, तो मशरे हराम पे के पास यानी उस वैली में मुजदलिफा की आप अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र क्या करो? मतलब वहां पे जाके आप सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, मगरिब और इशा जमा करके पढ़ी थी, तो हमने क्या करना है, अरफात में मगरिब नहीं पढ़नी, हमने मुजदलिफा में जाके मगरिब इशा जमा करनी है, फिर उसके बाद नमाज के अजकार होते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि वहां पे सो गए थे मुजदलिफा में, तो हमने भी वहां पे सो जाना और वहां पे ठहरना है रात को। अब वो एक बिल्कुल ऐसी जगह है कि चटियल मैदान है, अब उसके अंदर वहां पे रात गुजारनी है, और फिर उठते हैं आप तो फजर के बाद जब आपने नमाज पढ़ी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम भी लंबा फरमाया था उसके साथ, तो ये फिर अल्लाह का जिक्र हो गया। और जो सोना है वो भी सवाब का काम है, इसलिए क्योंकि आप एहराम की हालत में है ना, तो उस हालत में अगर आप सो भी रहे हैं तो ये इसलिए सो रहे हैं कि कल को एक लंबा दिन है, उसमें बहुत सारे काम करने हैं, रमी जमरात है, कुर्बानी है, और ये सब करने हैं, तो उससे पहले मैं अपने आराम करके अपनी एनर्जी गैदर करूं, ताकि मैं कल ताजा दम हो के अल्लाह की इबादत कर सकूं, अल्लाह ताला के ये सारे जो हज के मनासे के पूरे कर सकूं, वो आपका सोना भी इबादत है। याद रखें, जो काम भी आप इस नियत से करते हैं ना कि मैं अपने घर में भी अगर आप सोते हैं और आपको ये है कि मैंने फजर के लिए उठना है, मैं जल्दी इसलिए सो रही हूँ कि मुझे तहज्जुद के लिए उठना है, मेरी तहज्जुद ना खराब हो जाए, आप यकीन करें सारी आपके रात का सोना इबादत में लिखा जा रहा है। और क्या चाहिए हमें? इसके बरक्स अगर इंसान है, सोना तो है ही, वो तो हर एक ने सोना, काफिर भी सो रहा है, मुसलमान भी सो रहा है, एक का सोना उसके लिए सवाब का बाइस बन गया, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, बस वो सोया तो वो भी था, उसको कुछ भी नहीं मिला। तो देखिए, बाज दफा इंसान इन चीजों को समझ के किस तरह अपने लिए अजर कमा सकता है। इसीलिए अगर हम अपनी पार्टीज, अपनी ये इस तरह के इवेंट्स अर्ली रखें, सिर्फ इस खातिर कि अगर मैं देर की, जितने लोग मेरे घर से जाएंगे वो जाके लेट सोएंगे, और लेट सो के पता नहीं फिर फजर पे भी उठ पाएंगे, नहीं तहज्जुद को तो छोड़ ही दे, उनकी फजर लेट होगी, तो आपने भी अजर कमा लिया। अगर आप ये नियत रखते हैं, तो हम अपनी ना अपने स्केड्यूल्स को ना नमाजों के गिर्द घुमाया करें। किसी को उस वक्त ना बुलाएं जिस वक्त ऐन नमाज का वक्त है, उस वक्त वो कैसे आ सकता है? या तो अपने घर से नमाज पढ़ के चले तो आपके घर लेट पहुंचेगा, आपके घर आके नमाज पढ़ेगा तो फिर उसकी नमाज कजा हो जाएगी। तो इस तरह अपने स्केड्यूल्स को हमें रखना चाहिए। तो खैर ये तो साइड की बात हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वतकुरु कमा हदाकुम, उन याद करो अल्लाह को जैसा कि उसने तुम्हारी रहनुमाई की, जैसे उसने तुम्हें सिखा दिया, क्या जैसे उसने तुम्हें बता दिया। यानी अल्लाह ताला का जिक्र भी मन माने तरीकों से नहीं करना, बल्कि वो ही तरीका करना है जो अल्लाह ने बता दिया। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमें कुछ तरीके हैं जो हमने खुद ही इजाद कर ली। मिसाल के तौर पे एक तरीका आपको बताऊं, अल्लाह हू का वजीफा, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू करते रहते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं बस आप ये करो ताकि आपकी धड़कन भी अल्लाह हू बोलने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अल्लाह हू का जिक्र बताया? या और अजकार है अपनी तरफ से बनाए हुए, क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अजकार से भी अच्छे हैं? ये तो सिर्फ मुझे बता दें लोग। कहते हैं ये पढ़ लें कि नहीं पढ़ लें, भाई नहीं पढ़ लें, आप देखें पहले कि वो सुन्नत से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पर कई दुरूद है जो मसनून नहीं है, किसी और ने लिखे हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, क्या मेरे नबी के अल्फाज से भी ज्यादा अच्छे हैं? जो उन्होंने दुरूद सिखाए उनसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आपको? तो फैसला तो पहले ये कर लेना कि किसके अल्फाज ज्यादा आपको पसंद है, किसके अल्फाज ज्यादा अच्छे होंगे, किसके ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, किसके ज्यादा मुझे अजर व सवाब देने वाले होंगे। तो जिक्र भी वो करना है जैसी कि अल्लाह ने रहनुमाई की तुम्हारी, अपनी तरफ से ना शुरू कर लिया करो कि मेरा ये आइडिया आया है, इस तरह किया जाए। तो अब मसलन को कर कर मैं तो सोचती हूँ कि अगर सर नीचे और पैर ऊपर करके जिक्र किया जाए उसमें ज्यादा सवाब मिलेगा। भाई आप कहाँ से ये कह सकते, आप बस को दलील है? ये तो इस तरह खुद से नहीं निकाल सकते, जैसे अल्लाह ने हिदायत दी। अगर आप इस एक बात को समझ जाएंगे ना, ये तीन सिर्फ लफ्ज हैं, वस्कुरू हु कमा हदाकुम, सिर्फ इतनी बात को समझ लें और याद कर लें। जब आपको कोई कहे कि आप ये वाला इस तरह से तरीका करें तो कहें नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्कुरुहु कमा हदाकुम। एक एक जवाब है ना आपके पास, अल्लाह ने अगर ये बताया है ना अपने नबी के जरिए तो मैं ये जिक्र करूंगी। क्योंकि जिक्र किसको राजी करने के लिए करना है, किसको खुश करना है, आपने अजर अल्लाह से लेना है ना। तो जो उसने बताया नहीं वो कर रहे हैं, दीन के मामले में खुद अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। दूसरा माना कमा का क्या है, बवजह, बवजह बिकॉज, वस्कुरू याद करो उसको, क्यों, बिकॉज बवजह इसके के हदाकुम, उसने तुम्हें हिदायत दी। देखो इतनी बड़ी उसने तुम्हें नेमत दी है, तुम इस वजह से उसका जिक्र करो। देखिए जिसको नेमत हिदायत की मिल जाए ना, वो इतना खुशकिस्मत है, उसको पता है कि ये मुझे क्या बड़ी चीज मिल गई। जिसको मिली ना हो उस अंधे को क्या पता कि रोशनी क्या होती है, नूर क्या होता है, वो तो अंधेरों में रहने का आदी हो गया। पता नहीं है हम भी इस हिदायत की नेमत की कदर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें इसका एहसास भी है कि नहीं है कि हमें कितनी बड़ी चीज अल्लाह ताला दे रहा है। हमें पैसे मिले तो हमें बहुत खुशी होती है, आए किसी को बोनस मिल गया इतनी खुशी, वो तो पार्टी देता है इस बात पे कि मुझे बोनस मिला, मेरी पे बढ़ गई है, तो उसके ऊपर ट्रीट दी जा रही है। लेकिन हिदायत की नेमत इसकी कोई कदर नहीं है, ये तो मिले नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या मिल भी गई है तो कोई नहीं, क्या कौन सी ऐसी बड़ी चीज है। हिदायत की नेमत को छोड़ के कहते हैं पैसों की नेमत मिल जाए, वो मिल जाए, हालांकि वो पता नहीं वो तो इम्तिहान ही बन जाए कल को। तो याद करो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हें हिदायत दी, और हिदायत बहुत बड़ी नेमत है। जिसको कि इतनी बड़ी नेमत मिल जाए, जिसका दिल चाहता है ना कि वो गुण गाए उसके जिसने उसके ऊपर ये एहसान किया, वो चर्चे करे, वो उसका नाम बुलंद करे कि उसने मुझे दिया है। जैसे हमें कोई देता है तो हम थैंक यू करते नहीं हटते, इतने बड़े थैंक यू के नोट भेजते हैं, कितनी दफा उसका शुक्रिया अदा करती हैं, बिछ बिछ जाते हैं। तो जिसको ये कदर हो कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, वो तो उसके बहुत चर्चे करेगा, बहुत जिक्र करेगा, बहुत याद करेगा उसको। ये तो बहुत प्यारी बात है। वह इन कुन तुम मिन कबली ही लमिन दौलीन, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, इससे पहले तुम्हें कहाँ कुछ पता था, तुम तो गुमराह थे। यानी इस्लाम की नेमत दे दी तुम्हें, देखो तुम्हें हिदायत दे दी ना इस्लाम दे के, तुम्हें ये राह दिखा दी, तुम्हें ये मनासिक सिखा दी है हज के। पहले तो लोगों को अपनी तौर पे कई चीजें की हुई थी। आप सोचिए कि हज को ना मेला ठेला बनाया हुआ था उन्होंने। या हज क्या है? पार्टी टाइम है, फन टाइम है, एग्जीबिशन है, यानी सारी दुनिया से चीजें लाके बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये जो खरीदने बेचने की बात पीछे आई फजल की बात, इसमें एक ये भी बात नोट कर लें, याद रखें तिजारत करना वहां पे कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस नियत से ना कोई जाए कि मैं जा ही किस लिए रहा हूं कि वहां पे जाके कुछ बिजनेस हो जाए, चलो साथ हज भी हो जाएगा, ये नहीं, ये कहें हज हो जाए चलो साथ बिजनेस भी हो जाएगा, साथ चार पैसे भी कमा लेंगे। तो मेन पर्पस इसको ना बनाए कि तिजारत करनी है, मेन पर्पस ये हो कि इंसान हज का फरीजा अदा करे। समझ आ गई बात? अगर कोई हज के ग्रुप भी लेकर जाते हैं या कुछ उससे कोई कमाता है, तो ये नहीं मेन पर्पस होना चाहिए कि ये बस मेरा बिजनेस है, ये मेन पर्पस होना चाहिए कि मेरा हज हो जाए। इसी तरह यहाँ पे कि इससे पहले तुम्हें पता नहीं था, तुम गुमराह थे, तो वो आते थे यहाँ पे अपने बड़ों के चर्चे करते थे, आगे बात आएगी भी, अपने बड़ों की कहानियां उनके किस्से बताते थे, उसके ऊपर फखर करते थे, और बस खरीदो फरोख्त और मेला ठेला और ये वो, बस ये फन टाइम हो गया। तो नहीं, अल्लाह ताला ने फिर हिदायत दी, और देखो इसको कितना मीनिंगफुल बना दिया हज को। तुम आफीदु मिन हैसु अफादन नास। अब ये बात कही गई कि फिर तुम पलटो जहां से पलटते हैं लोग। ये किसके लिए कहा गया? कि असल में इस्लाम से पहले कुरैश मक्का जो थे वो इतना अपने आप को सेक्रेट समझते थे कि वो कहते थे हम अरफात तक नहीं जाएंगे, क्योंकि अरफात जो था हदूद हरम से बाहर था। अरफात जो था हदूद हरम में नहीं है, मुजदलिफा मीना ये हदूद हरम में है, ये अरफात बाहर है। तो कहते थे हमारी ये लोग दूसरे जाए ना जो कुरैश के नहीं है, हम इतने बड़े लोग हैं हम क्यों बाहर जाए, तो वो नहीं जाते थे अरफात तक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम भी जाओ वहीं से पलटो जहां से दूसरे लोग पलटते हैं, यहां से और लोग जाके पलटते हैं। आप देख लें अल्लाह ताला ने हज है या ये जितने भी हज के मनासिक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं रखा कि कोई कुरैश है तो वो ऐसे करेगा, जो दूसरे हैं वो तो ऐसे करेंगे। अब कुरैश ने तो अपना लिए वो भी रखा हुआ था ना कि हम तो इतने बड़ी चीजें हम तो अपने कपड़ों में करेंगे, बाकी सारे लोग नंगे करेंगे, क्योंकि उनके पास जो कपड़े हैं वो तो गुनाह वाले कपड़े हैं, उनमें तो उन्होंने गुनाह किए होंगे, तो वो अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझते हैं। अल्लाह ताला ने सारी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना हज में खत्म कर दी। आज देखिए आप हज क्या है कि कोई रेसिज्म नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, लैंग्वेज सब खत्म कर दिए। किसी का ब्लड सेक्रेड नहीं है, कोई सैयद ज्यादा ज्यादा नहीं है कि वो आगे बैठेगा, आगे हरम में खड़ा होगा, वो तवाफ पहले करेगा दूसरे बाद में करेंगे, या टाइमिंग्स रखे हो एशियंस जो है इस टाइम पे करें उनके लिए बस यही टाइम है, बाकी सारा टाइम अरब के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है वहां पे। सुभान अल्लाह, फिर भी हमारे दिमागों से ये रेसिज्म नहीं निकलता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकलती, फिर भी नहीं निकलती। सोचें जबकि अल्लाह ताला ने हमें सारे हज में सिखाया, ये कहीं आप नहीं देखेंगे कोई डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी क्यों नहीं समझ आती हमें। अस्तग़फिरुल्लाह, और बख्शिश मांगो अल्लाह से, यानी जो चीजें पहले हो गई, जो पिछली रस्में, जो जो भी तरीके अपने तौर पे निकाले हुए थे, उनके ऊपर अब तोबा करो अल्लाह से। इन अल्लाह गफूर रहीम, जो पहले गुजर चुका अल्लाह ताला माफ करने वाला, मेहरबान है अल्लाह, बख्शने वाला है, उसके ऊपर सच्ची तोबा की जाए। अल्लाह ताला हमें ये आयात समझने की, सीखने की, सही से इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इन आयात के साथ ही ये दुआ है अल्लाह ताला हमें सबको हज मबरूर की तौफीक अता फरमाए। पहले किया भी हुआ तो अल्लाह ताला फिर तौफीक अता फरमा, अल्लाह हज मबरूर की तौफीक अता फरमा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक अनदर ब्यूटीफुल लेसन था आज हमारे लिए। आप इसको, इन आयात को सुने और एक एक लफ्ज को देखें आपके, अब आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। जब आपने तफसीर सुनी है तो इससे सुनने से पहले कैसा लग रहा था सुन के, पढ़ के इन आयात को, और तफसीर सुनने के बाद अब ये आयतें कैसी लग रही हैं, ये देखें डिफरेंस।
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم